प्रतीक्षसे, प्रतीक्षा करती हो। अस्माकं, हमारे, गृहान, घर पर, बलिभोज, कौवे, यथा, जिस तरह। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद महाराज के द्वारा है। श्रीला प्रभुपाद की इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। ये शर्मिष्ठा बोल रही है दिव्यानी को, अरे भिखारिन, जब तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है तो व्यर्थ ही क्यों इतना बोल रही हो? क्या तुम लोग अपनी जीविका के लिए हमर आश्रित रहकर कौओं की भांति हमारे घर पर प्रतीक्षा नहीं करती हो? तात्पर्य, कौवे का कोई स्वतंत्र जीवन नहीं होता। वे गृहस्थों द्वारा कूड़ादानों में फेंके गए जूठन पर पूरी तरह आश्रित होते हैं। ब्राह्मण अपने शिष्यों पर आश्रित रहते हैं। अतः एव जब शर्मिष्ठा दिव्यानी द्वारा बुरी तरह अपमानित हो चुकी तो उसने दिव्यानी को कौवे जैसे भिक्षुकों के परिवार से संबंधित बतलाया। स्त्रियों का स्वभाव है कि थोड़ा सा उकसाने पर वे वाक युद्ध करने लगती हैं, जैसा हम इस घटना में देख सकते हैं। उनका ऐसा स्वभाव बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदाति। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील प्रभुपाद महाराज की निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गिरिधारी मंदिर और उनके जो प्रेसिडेंट है कमललोचन प्रभु, मैनेजमेंट की ओर से मैं आप सभी लोगों का इस रविवार के श्रीमद् भागवतम सत्र में स्वागत करता हूं। ये प्रवचन वास्तव में कमल लोचन प्रभु ही देने वाले थे आज का, किसी कारण से वो व्यस्त हैं, तो मुझे कल बताया गया रात को कि मुझे देना है ये प्रवचन। जैसे मेन सुपर स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट या डॉक्टर जो रहते हैं वो कभी व्यस्त हो जाते हैं तो कंपाउंडर को बता देते कि थोड़ा देख लीजिएगा, तो मेरा वही स्थिति है, सुपर स्पेशलिस्ट एब्सेंट है। और आप सब जानते हैं कि मैं डिग्री कंपाउंडर भी नहीं, सिखाऊ कंपाउंडर की तरह व्यासन पे न बैठने की कोई समता है न कोई लायकात है, लेकिन हर समय ये हिम्मत करता हूँ आप लोगों के आशीर्वाद के बल पर और प्रार्थनाओं के बल पर और वरिष्ठ वैष्णव का आदेश रहता है, जैसे दयामूर्ति प्रभु है, कमल लोचन प्रभु है, बनामाली प्रभु है, चांद गोपी प्रभु है। मैंने सुबह आके चांद गोपी प्रभु जी को ही बताया कि आप ही दीजिए, आप तो इसी विस्तार से है सरोत्तम दास ठाकुर, तो आप जितना अच्छा जानते हैं उतना कौन जान सकता है। तो कहे नहीं नहीं आप दीजिए करके, उन्होंने ठीक है आपका आदेश का पालन करता हूँ। अच्छी बात है कि आज संडे होते हुए थोड़ा समय ज्यादा मिलता है, तो थोड़ा भागवतम लेते हैं, जो इस श्लोक की घटना है, जो आज का श्लोक है, और बाद में नरोत्तम दास ठाकुर का जीवन वृतांत लेते हैं। पता नहीं ये श्लोक ऐसे ही श्लोक ये नौवे स्कंद में आते हैं, जहां माताजियों को बुरी तरह बदनाम किया गया है, और मेरे भाग्य में यही श्लोक आ रहा है। तीन चार भागवतम श्लोक जितने भी आते हैं, मैंने देखा है कि ज्यादातर वैसे ही श्लोक आ रहे हैं कि जहां मुझे कुछ कठिन बात पे विश्लेषण करना है। पिछली बार उर्वशी माताजियों की प्रताड़ना कर रही थी, आज ये शर्मिष्ठा और देव्यानी के बीच में कलह हुआ है, झगड़ा हुआ है। कथा कुछ इस प्रकार थी कि देव्यानी जो शुक्राचार्य ब्राह्मण की बेटी है, और शर्मिष्ठा एक क्षत्रिय राजा की बेटी है, वो दोनों में मित्रता थी। तो शर्मिष्ठा क्योंकि क्षत्रिय राजा की बेटी है, कोई बहुत बड़े राजा नहीं थे लेकिन फिर भी राजा थे, उसकी अनेक दासियां थी, और वैदिक समय में क्या हुआ करता था, क्षत्रिय लोग या उसके भी नीचे वर्ण के लोग जो हैं वो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। ब्राह्मण जो सच्चे ब्राह्मण हैं वो वास्तव में भगवान से भी ज्यादा श्रेष्ठ माने गए हैं, और उनकी सेवा करना भगवान की सेवा से भी बढ़कर होता है। तो सारे निचले वर्ण के लोग ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, और ब्राह्मण जो है वो उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते हैं, ताकि वो अपने भोग विलास गृहस्थी माया जीवन में रह के भी आध्यात्मिक प्रगति कर सके उनके मार्ग में रहते हुए। जैसे बहुत बार मैं सोचता हूं कि वास्तविक जो भक्ति होती है वो तो बहुत बहुत कम विरले लोगों को ही पता है, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर है, या उनके जो अभी जो भजन गा रहे थे उनमें जितने लोगों के नाम आ रहे हैं, ऐसे आचार्य लोग हैं, बहुत ही कम विरले होते हैं जिन्हें वास्तविक भक्ति क्या होती है वो पता होता है, और वैसे उनका जीवन होता है भक्ति में। आजकल के समय में वास्तविक भक्ति का दर्शन दुर्लभ है, विशेष करके अगर आप इस्कॉन संस्था के बाहर जाओ तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन हमारी संस्था में भी आके देखेंगे तो बहुत ही कम विरले होते हैं जो दुर्लभ जो वास्तविक भक्ति को जानते हैं और करते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं घर में, 3-4-10 बच्चे होते हैं, जब जमा होते हैं तो वो लोग घर घर खेलते हैं, मालूम है, छोटे छोटे बर्तन लेते हैं, छोटा सा गैस लेते हैं, हाँ ऐसे घर घर खेलते हैं, कोई रसोई बना रहा है, कोई खा रहा है, ऐसा सब। लेकिन वो वास्तविक घर घर जो रहता है खाना पकाना, हाँ खाना वगैरह, उससे कितना कितना ही दूर की बात है ना, ये वास्तविक खेल नहीं है, वो केवल घर घर खेल रहे हैं, और वास्तविक कुछ और ही होता है। ठीक वैसे ही है आजकल हम लोगों की भक्ति, वो घर घर खेलने के जैसी हो जाती है, हम लोग तो केवल भक्ति में घर घर खेलते रहते हैं, छोटा मोटा कीर्तन भजन करते हैं, प्रवचन करते हैं, या छोटी मोटी सेवा करते हैं। वास्तविक भक्ति ये लोग ही कर रहे थे, नरोत्तम दास ठाकुर जैसे महात्मा, उन्हीं को पता था एक्चुअली भक्ति क्या होती है, उनके जीवन वृत्तांत से पता लेगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्यों मैं ऐसा बताना चाहता हूं। वापस इस कथा पे आते हैं, शर्मिष्ठा और उनकी जो फ्रेंड थी वो लोग देव्यानी की सेवा करते ये सोचकर के ब्राह्मण की बेटी है, ब्राह्मणों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, और शुक्राचार्य एक महान कर्मकांडी ब्राह्मण थे, उनका कर्मकांड ब्राह्मणियों में वो श्रेष्ठ है, यहां तक कि उनको संजीवनी विद्या थी, मरे हुए व्यक्ति को भी पुनर्जीवित कर देते थे, ऐसे ब्राह्मण थे। आजकल की तरह नहीं कि जीवितों को भी मार देंगे दक्षिणा ले लेके, वैसे नहीं थे वो। लेकिन एक बार क्या हुआ कि ये सब दिव्यानी, शर्मिष्ठा और उनके सब मित्र जितनी हजारों थी, वो लोग एक सरोवर में स्नान करने गए। वहां स्नान कर रहे थे तो वहां से शिवजी अपनी पत्नी पार्वती के संग में गुजर रहे थे, अपने बैल पे बैठकर, नंदी पे बैठकर। और उस समय वो सारी स्त्रियां नग्न अवस्था में थी। तो जैसे ही उन्होंने शिवजी का दर्शन किया, देखा कि शिवजी जा रहे हैं, तो तुरंत ही सब लोग सरोवर से बाहर आके अपने अपने कपड़े पहनने लगी। लेकिन इस गड़बड़ में क्या हो गया, शर्मिष्ठा के हाथ में दिव्यानी के वस्त्र आ गए। और उस दिव्यानी जो श्रेष्ठ मानी जाती है, उसका वस्त्र उसने पहन लिया। और दिव्यानी को किसी और का वस्त्र मिला और उसने पहन लिया। जब दिव्यानी ने देखा थोड़ी देर के बाद कि मेरे वस्त्र शर्मिष्ठा ने पहन लिए, हाँ, जो मेरी सेविका है, मेरी दासी है, उसने मेरे वस्त्र पहन लिए, ये कैसे इसकी हिम्मत, उसको क्रोध आ गया। वास्तव में ब्राह्मण को क्रोध आना ही नहीं चाहिए, ब्राह्मण मतलब परम त्यागी होता है। लेकिन यहां पे कभी कभार ऐसे ब्राह्मणों का दर्शन उन युगों में भी होता था जो आजकल होता है वैसे ही। तो ये कहती है मेरे वस्त्र उसने कैसे पहन लिया, उसे गाली देने लगी, उसे चिल्लाने लगी, बोलती अरे तुम दासी होकर ऐसा साहस कर बैठी कि हम लोगों के वस्त्र को पहन लिया, ये दुस्साहस कैसे कर रही हो तुम। क्रोधित हो गई तो शर्मिष्ठा को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो भी तो राजा की पुत्री थी, क्षत्रिय का स्वभाव है, हाँ, उसका कोई अपमान करे वो सहन नहीं करेगा। हालांकि वो जानती थी कि ये ब्राह्मण कन्या है, ये श्राप भी दे सकती है या उसके पिता भी श्राप दे सकते हैं, लेकिन फिर भी उसी क्रोध आ गया। तो क्रोध में बोलते हैं ना, क्रोधा जो सम्मोह जो होता है वो बुद्धि नष्ट हो जाती है, भवती सम्मोह, बुद्धि नष्ट होने पे उसने भी उसको बोल दिया। क्या बोला वो आज का श्लोक है, वो देखिए क्रोध में क्या बोल रही है, अरे भिखारिन, हाँ, अरे ब्राह्मण ही नहीं, अरे भिखारिन, सीधा उसको भिखारी, जैसे क्रोध में आ जाते हैं ना तो व्यक्ति ऐसी ऐसी गाली बक देता है, कुछ भी बोलता है किसी को भी। वास्तव में कभी वो भिखारिन नहीं थी, लेकिन बोला अरे भिखारिन, जब तुम्हें अपनी स्थिति का पता ही नहीं है तो व्यर्थ ही क्यों इतना बोल रही हो। वो कहना चाहती कि जब तुम्हें पता ही नहीं है कि वास्तविक तुम कौन हो, तुम अपने आप को ब्राह्मण ही समझ रही हो, ब्राह्मण की बेटी हो, लेकिन वास्तव में तुम ब्राह्मण की बेटी हो ही नहीं, तुम तो भिखारी न हो। तो प्रश्न होता है ऐसे कैसे भिखारीन है, हाँ, अगर धनिया ये पूछे दिव्यानी के मैं कैसे भिखारीन हुई, क्या तुम लोग अपनी जीविका के लिए हम पर आश्रित रहकर कौओं की भांति हमारे घर पर प्रतीक्षा नहीं करती हो, हाँ, क्या कौओं की भांति कौआ जैसे गृहस्थ के घर के पास जाके कैंव 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 करके खाना मांगता है, वैसे क्या ब्राह्मण हर गृहस्थ, हर क्षत्रिय राजा या गृहस्थ के घर पे जाके दान दक्षिणा अन्न वगैरह नहीं मांगता है क्या, मांगते हो ना, इसीलिए तुम भिखारी हो, ऐसा उसका कहना था। अब ये श्लोक जो है यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूर्व के समय से ये देखा जाता है कि स्त्रियां हमेशा लड़ती रहती है आपस में, विशेष करके वाक युद्ध करती रहती है। अगर छोटी छोटी बात भी अगर कोई घटना हो जाए, हाँ, स्त्रियों का स्वभाव है कि थोड़ा सा उकसाने पर वे वाक युद्ध करने लगती है। वाक युद्ध यानी बोली से, अच्छा है कि मारा पीटी नहीं करते है पुरुषों की तरह, लेकिन वाक युद्ध शुरू हो जाता है और वाक युद्ध में वो कुछ भी गालियां बक हैं। एक ब्राह्मण की बेटी है जिसकी तुम सेवा कर रही हो जीवन भर, एक उसके वस्त्र पहन लिए तो उसको क्रोध आ गया, उसने कुछ बुरा भला थोड़ा कह दिया, हालांकि उसने भी बुरा भला ही बहुत कहा था, ऐसा कहना नहीं चाहिए था, उसका भी दोस्त था, लेकिन इसको सीधा कह दिया अरे भिखारिन। ब्राह्मण, वेद कहता है दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, एक जो अपनी जीविका के लिए गृहस्थों पे आधारित रहते हैं, उससे दक्षिणा लेते हैं, उसके घर पे अन्न प्रसाद वगैरह मांगते रहते हैं, और दूसरा ब्राह्मण होता है जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है, हाँ, जो कभी भीख नहीं मांगता है, जो किसी से कभी भी कोई भी परिस्थिति में मांगेगा नहीं। वो वैदिक समय में जब खेत को बोहा जाता है और खेत से जब किसान जो होता है वो अनाज लेकर सब कुछ लेकर चले जाए, बाद में छोटे छोटे ऐसे कुछ अनाज के दाने जो खाने के लायक नहीं होते हैं, टुकड़े हो चाहे सड़े हुए हो, जो उधर पड़े रहते हैं, उसी टुकड़ों को उठाकर वह अपना जीवन निर्वाह करता है। वह उसे वेद श्रेष्ठ ब्राह्मण कहता है, वो भिक्षा नहीं मांगेगा, वो केवल भगवान की कृपा पे ही आधारित जीवन बिताता है कि भगवान वहां पे जितना बचाए मेरे लिए वही मेरे लिए पर्याप्त है, उतना ही मेरे लिए जीवन के लिए मुझे उसे स्वीकार करना है। इसे कहते हैं रिनन्सिएशन, त्याग। त्याग एक बहुत बहुत बड़ी बड़ी बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन से हम देख सकते हैं कि त्याग क्या होता है, जिनका आज तिरोभाव है। जिला नरोत्तम दास ठाकुर जो एक महान परम वैष्णव आचार्य है हमारी परंपरा से जुड़े, ये नरोत्तम दास ठाकुर खेतुरी गांव में उनका आविर्भाव होना था। खेतुरी कहाँ है? गोपालपुर एक विलेज है, विस्तार है, बांग्लादेश में है अभी, उस समय भारत में था, अपना समय में वो बांग्लादेश है। वहां पे उनका आविर्भाव होना था। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की लीला की समाप्ति के थोड़े ही समय में, बाद में, यानी वो कंटेम्प्ररी नहीं थे, साथ में नहीं थे। जब चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अन्य सारे उनके जो पार्षद गण, बहुत कम थे उस समय, कीर्तन करते हुए जब राम के लिए आए थे, जब पुरी से वो चलते चलते वृंदावन की ओर जा रहे थे, तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के उद्धार के लिए जब वो राम के लिए आए थे, उस समय कनाई नटशाला के पास में वह एक भाव विभोर होकर कृष्ण प्रेम में मग्न डूबे हुए महाप्रभु एक दिव्य आध्यात्मिक एक्स्टैटिक जो कहते हैं वो कीर्तन कर रहे थे। और इतने दिव्य प्रेम में डूबे हुए कीर्तन कर रहे थे और साथ में पार्षद गण थे, नित्यानंद प्रभु भी थे, और अचानक खेतुरी गांव की ओर देखते हुए जो पद्मा नदी के उस पार में था, उस किनारे, इस किनारे थे ये महाप्रभु, और दिव्य भावावेश में रह के वो जोर से चिल्लाने लगे, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। सारे भक्त लोग विचार करने लगे कि ये महाप्रभु कीर्तन करते करते अचानक किसका नाम ले रहे हैं, नरोत्तम नरोत्तम, ये कौन है नरोत्तम, क्योंकि उस समय नरोत्तम नहीं थे। तो नित्यानंद प्रभु ने पूछा महाप्रभु से कि महाप्रभु नरोत्तम कौन है, आप किसे पुकार रहे हैं, वो तो कोई नहीं है, हम तो नहीं जानते हैं, आप जानते हैं कैसे किसी व्यक्ति को, कोई है कोई पार्षद आपका? तो महाप्रभु बहुत नम्र थे, भक्त अवतार में थे ना, भक्ति के भाव में भक्त अवतार में थे। वो कभी ये नहीं कहते थे कि मैं भगवान हूं या मेरा प्रेम देखो, वो नित्यानंद प्रभु को श्रेय देते, कभी भी कोई उनकी उनके गुणगान गाते नित्यानंद प्रभु को श्रेय देते, कुछ भी आगे का भी भविष्यवाणी करना है नित्यानंद प्रभु को श्रेय देंगे। बोले नित्यानंद प्रभु, ओ माय लॉर्ड, ओ मेरे मास्टर, मेरे भगवान, मेरे मालिक, आप तो जानते हैं कि आपका जो दिव्य प्रेम है उसको धारण करने के लिए भविष्य में बहुत ही जल्द समय में इसी पद्मा नदी के उस किनारे पे एक महान व्यक्ति अवतरित होने वाले हैं जो आपके इस प्रेम को धारण करने वाले हैं, उस व्यक्ति का नाम मैं पुकार रहा हूं, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। हकीकत यह थी कि उस समय जो चैतन्य महाप्रभु दिव्य प्रेम में अश्रु धारा के साथ जो कीर्तन कर रहे थे, वो जो शत प्रतिशत शुद्ध दिव्य प्रेम था, उस प्रेम को धारण करने वाला व्यक्ति अवतरित होने वाला था। लेकिन महाप्रभु नम्रता से कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु आपका प्रेम। हाँ देखिए, नम्रता किसे कहते हैं वो हमें बार बार यहां से सीखने मिलता है चैतन्य चरितामृत और भागवत की कथाओं से। तो चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं, मैं नदी में स्नान करूंगा, नित्यानंद प्रभु और आप भी सब चलिए, हम लोग ये जो कृष्ण प्रेम है नित्यानंद प्रभु का वो इस नदी को सुप्रत करते हैं। सब लोग स्नान करने गए और जो दिव्य प्रेम उस समय था कीर्तन का, वो चैतन्य महाप्रभु ने पद्मा नदी जो थी उसको सुप्रत किया और प्रार्थना किया, हे पद्मा माता, आप इस प्रेम को ठीक इसी तरह संभाल के रखिए, आगे चलकर एक नरोत्तम नाम का व्यक्ति जब आप में यहां पे नदी में स्नान करने आया तब उसे यह प्रेम सुप्रत कर देना। तो पद्मा माता पूछती है मैं कैसे जानूंगी कि नरोत्तम कौन है, इस नदी में स्नान करने हजारों लोग आते रहते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि नरोत्तम कौन है। तो बोले आपको पता चल जाएगा जिस समय जो व्यक्ति आप में स्नान करने के लिए प्रवेश करेगा, उसी क्षण आपके जीवन में एक परिवर्तन हो जाएगा, आप एक महान भक्त कृष्ण प्रेम में डूबी हुई एक भक्ति बन जाओगी और आपके शरीर में अष्ट विकार आएंगे, उस समय आप समझ लेना कि ये व्यक्ति जिसने प्रवेश किया है वो नरोत्तम है। तो ऐसे होता है सामान्य जनों के जीवन में, हम लोग जो भक्ति घर घर खेलते रहते हैं हमारे जीवन में, हम सब लोग अभी खेल रहे हैं, ज्यादातर लोग, कुछ होंगे विरले उनको अपवाद करके मैं बात कर रहा हूं, हमारे जीवन में हमें भक्ति घर घर खेलते रहना चाहिए, खेलते रहना चाहिए, खेलते रहना चाहिए। पता नहीं कौन कब कौन सा वैष्णव एक महात्मा आके हमारे जीवन में भक्ति का परिवर्तन ला सकते हैं, हमें भक्ति प्रदान करके चले जा सकते हैं। जैसे अभिराम ठाकुर थे, भागवत में वर्णन आता है, चैतन्य भागवत में, एक डंडा छड़ी लेके घूमते थे, कभी किसी को देखा कि अरे इसको भक्ति का कुछ पड़ा नहीं है, फटाक करके उसको मारते थे, और जैसे उसको एक छड़ी मारते ना वो फट करके एक परम वैष्णव बन जाता, हाँ तुरंत ही सारा क्लेश, सारा जो भोग विलास की वृत्ति है हृदय में पूरी खत्म हो जाती थी। ऐसे बहुत सारे आचार्य हैं जो कभी कभार असीम कृपा करके किसी को अचानक भक्त बना डालते हैं। एक फॉरेनर इस्कॉन की माता जी थी, उसको नरसिंह देव ने एक दिन अचानक भक्त बना दिया, अभी की बात है, अभी थोड़े समय की बात है, कुछ 10-12 साल भी नहीं हुए रहेंगे। एक विदेशी माता जी मायापुर में आई और नरसिंह देव को प्रार्थना किया कि नरसिंह देव मैं अपने आप से भक्त बन ही नहीं सकती हूँ, इम्पॉसिबल है मेरे लिए भक्तिन बनना, क्योंकि मेरे हृदय में इतना काम वासना भोग की इच्छा है कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। उसकी प्रार्थना इतनी थी कि अचानक एक दिन रात को नरसिंह देव उसके स्वप्न में आए, हाँ उसकी छाती पे बैठ गए और बोले कहाँ है तेरा वो सब काम वासना भोग हृदय में, बता मुझे। और नरसिंह देव ने उसके हृदय में हाथ डाला और एक काला एक कुछ पदार्थ निकाला जो बॉल जितना बड़ा था, और देखे यही है ना तुम्हारा भोग विलास, मैं फेंक देता हूं, और फेंक दिया, बोले आज से तुम भक्त हो गई। बस वो माता जी भक्त हो गई दूसरे दिन से, श्रेष्ठ भक्ति, वो घर घर खेलना बंद हो गया, वास्तविक घर हो गया उसका। ऐसे होता है घटना, अभी ये होने वाला है। नरोत्तम दास ठाकुर का जब आविर्भाव हुआ खेतुरी गांव में, गोपालपुर जो विलेज था वहां ट्रिक था, ये खेतुरी बहुत छोटा सा गांव था, लेकिन उनके पिताश्री जो थे वो वहां के राजा थे, इतने बड़े राजा थे और जमींदार थे, कृष्णानंद दत्त उनका नाम दिया है, बहुत बड़े राजा थे। उनके भाई पुरुषोत्तम दत्त भी जमींदार थे, राजा थे, और ये एक लौता बेटा था कृष्णानंद दत्त का, और उनके भाई जो थे पुरुषोत्तम दत्त उनका भी एक बेटा था संतोष दत्त करके। क्योंकि ये राजा परिवार से थे, जमींदार उन समय में बहुत ही धनी होते थे, इनके पास बहुत धन था नरोत्तम दास ठाकुर के पास। कुछ 12 साल की उनकी उम्र हुई थी, जब छोटे थे ना बच्चे तभी से ही जब एस्ट्रोलॉजर को बुलाया, और उस समय में एक प्रथा थी, आज भी है बंगाल में ये प्रथा अभी भी चलती है, कि जब उसका उसको अन्न ग्रहण करवाते हैं बच्चे को, तो एक पत्रिका बनवाते हैं, हम लोग जन्माक्षर कहते हैं, जिसमें उस बच्चे के भविष्य के बारे में बताया जाता है, तो जो सच्चे एस्ट्रोलॉजर रहते हैं वो कह पाते हैं। तो उस समय उनको बुलाया और बताया कि इस बालक का जरा जन्मजात संस्कार करके देखिए और फिर उसकी पत्रिका बना के बताइए क्या है करके। तो पत्रिका बना के उन्होंने बताया कि ये तो एक महान 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 वैष्णव है, इसलिए इस बालक का नाम रखा जाए नरों में जो उत्तम है नरोत्तम। उन्होंने पहचान लिया कि ये महान वैष्णव है। अच्छा, ये जब विधि पूरी हो रही थी तो अन्न जो उनको अर्पण करना चाहिए, भात खिलाते हैं बंगाल में बच्चे को, छोटा सा एक भात का दाना, 6 महीने का बच्चा रहता है, तो भात का दाना लाए और उसको खिलाने का प्रयत्न किया माता पिता ने, तो नरोत्तम नहीं खा रहे थे, मुंह बंद कर देते थे अपने हाथ पे, नहीं खाना है। तो ब्राह्मण ने आया, प्रयत्न किया, सब लोगों ने प्रयत्न किया, लेकिन बेटा खाने को तैयार ही नहीं है, नरोत्तम खाने को ही तैयार नहीं है, नहीं खाऊंगा करके सब लोग परेशान हो गए, ऐसा कैसा कभी होता नहीं है। तब ब्राह्मण ने सोचा कि अगर ये महान वैष्णव है तो ये भोग कैसे खाएगा। तो एक ब्राह्मण ने बताया कि आप लोग शायद एक गलती कर रही है, ये भोग है, प्रसाद नहीं है, आप पहले अन्न को भगवान कृष्ण को अर्पण करिए। जब अभी एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि ये महान वैष्णव है तो ये भोग कैसे खाएगा, तो तुरंत ही उन्होंने गलती स्वीकार की, फिर से खाना पकाया, भगवान को भोग लगाया, और जैसे ही अन्न दिया, नरोत्तम जो बालक था उसने उसको ग्रहण कर लिया। तो उनके जो कार्यकलाप रहते वो बचपन से पता रहे हैं। पढ़ने लिखने के लिए जब स्कूल में भेजा गया तो अति बुद्धिशाली, श्रुतिधर, जो सुना 100% कंप्यूटराइज, हाँ, प्रिंट आउट, जेरोक्स की तरह याद रह जाता था। टीचर्स भी एकदम आश्चर्यचकित रहते थे कि इसको क्यों इतना याद रहता है। उन्हें कहाँ पता था कि ये चंपक लता है, चंपक मंजरी है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। चंपक मंजरी गोलक वृंदावन से आई हुई थी, जो एक बालक के रूप में भविष्य में प्रचार करना है करके चैतन्य महाप्रभु के आदेश से आई हुई मंजरी थी। अब उन लोगों को बुद्धि क्या है, वो तो वो स्वयं आत्मा के स्तर पे गए, पूर्ण ज्ञान है, आत्मा जो है वो ज्ञानमय है, उसे अज्ञानता क्या होता है वो पता ही नहीं होता है, भूलना, हाँ, ये विस्मृति, वो उन लोगों को पता ही नहीं होता है। जैसे सूरज को अंधकार क्या होता है पता ही नहीं है, आज तक उसको अंधकार क्या होता है पता ही नहीं है, और पता चल भी नहीं सकेगा उसे। वैसे जो आत्मा के स्तर पे होते हैं, जो दिव्य पार्षद होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि भूलना क्या होता है, विस्मृति क्या होता है, अज्ञानता क्या होती है, भोग क्या होता है, माया क्या होती है, उन्हें वो सब चीजों का पता ही नहीं होता है। उन्हें तो त्याग ही त्याग उनके जीवन में रहता है, वही ज्ञान है ना। तो ये लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ, 12 साल का हुआ तो नित्यानंद प्रभु ने उनके स्वप्न में आके उन्हें आदेश दिया कि कल सुबह उठकर तुम पद्मा नदी में स्नान करने जाओ, वहां तुम्हें चैतन्य महाप्रभु ने जो कृष्ण प्रेम रखा है वो पद्मा नदी तुम्हें सुप्रत करेगी, और उसे धारण करने के बाद तुम वृंदावन जाओगे और बाद में भक्ति का प्रचार करोगे, वहां तुम्हें दीक्षा लेनी होगी श्रीला लोकनाथ गोस्वामी के द्वारा। तो वो उठे सुबह, उनका हृदय तो वैसे भी भोग विलास में बिल्कुल नहीं मानता था, उनकी तो इच्छा ही थी कि मैं कैसे भी करके यहां से भाग जाऊं और चैतन्य महाप्रभु का संग करूं, उनके उनके जो भक्तगण है उनका संग करूं, महाप्रभु तो तब चले गए थे, उनके भक्तों का संग करूं। उठे, पद्मा नदी के किनारे पे गए स्नान करने, जैसे ही नदी में प्रवेश किया नदी में एक बहार आ जाती है, तुरंत ही पद्मा माता समझ गई कि वही वो व्यक्ति है जिसका जिक्र चैतन्य महाप्रभु ने कुछ सालों पहले मुझे किया था, जिसका कृष्ण प्रेम, दिव्य प्रेम जो है महाप्रभु का, वो संभाल के रखा हुआ है इसे देने के लिए। जैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर प्रवेश किए, पद्मा माता आती है और आदि विनंती करती है कि ये प्रेम आप स्वीकार करिए, करके उसे सुप्रत करती है। जैसे ही प्रेम सुप्रत किया, हृदय में कृष्ण प्रेम ने प्रवेश किया, वो तो एकदम गोल्डन कलर के हो गए, सुवर्ण, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रवेश किए उसके हृदय में। महाप्रभु का प्रेम और महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है ना, स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनके हृदय में प्रवेश किए, एकदम गोल्डन कलर के, गौर वर्ण के हो गए, पूरा पूरा एकदम, जो बाहर का जो व्यक्ति देखता है उसमें उसको समझ ही नहीं पाएगा कि इसको क्या हो गया अचानक। घर आए तो माता पिता देखे, अरे ये बेटा गोल्डन गौरंग कलर का हो गया, अब कृष्ण प्रेम में रो रहा है पागलों की तरह, नाच रहा है, कीर्तन कर रहा है, अष्ट विकार उसके शरीर में दिख रहे हैं, तो डर गए, बोले ये तो अभी और भाग जाएगा, इसको जल्दी शादी करवा दो। तुरंत ही सबको आदेश दिया, अरे इसके लिए कैसे भी कहां से भी लड़की ढूंढ के लाओ, फटाफट, राजा का बड़ा, कहां से लड़की, ना क्या हजारों लड़कियां तैयार रहेगी, लेकिन नरोत्तम को शादी करना ही नहीं था, कभी उन्हें शादी करना ही नहीं था, वैरागी, टोटल रिनंसिएशन, यहां से हम लोग सीखते समझते, राजा का बेटा है, जितना चाहिए उतना धन है, जो चाहिए वो खरीद सकते हैं, मर्सिडीज कार लेना था तो वो भी ले सकते हैं, आजकल हम लोग देखते हैं कि लोगों को कार खरीदने की क्षमता नहीं रहती है, लेकिन कार खरीदने का सपना दिन रात देखते रहते हैं। कार लेना है, कार लेना है, कार लेना है। स्विफ्ट मारुति अल्टो नहीं मिली तो कम से कम नैनो तो लेना ही है, कुछ भी हो जाए। हाँ, छोटी तो छोटी कार, और वो भी नहीं मिली तो सेकेंड हैंड लेके आऊंगा, लेकिन कार तो लेना ही है, सबको बताना है। यहाँ तक कि भक्त लोग भी सदैव हृदय में कामना कर रहे थे, कार लेना है, कार चाहिए। नहीं, ये प्रभु जी कहते भक्त लोग नहीं कहते, मैं वो घर घर खेलने वाले भक्तों की बात करता हूँ। हम गृहस्थी में बैठे हमें पता है कौन क्या क्या बातें और स्वप्न कर रहे हैं, मैं खुद भी स्वप्न कर रहा हूँ। हाँ, सबको कार लेना है। आप शायद मंदिर में हैं तो आपका इस वातावरण में आपको पता नहीं होगा कि लोगों को कैसे कार की कामना रहती है, लोग क्या क्या करते हैं। अब थोड़े समय पहले की एक घटना, सत्य घटना बता रहा हूँ आपको, उसको समझेगा। एक इस्कॉन के ही भक्त है, बहुत सालों से जुड़े हुए, आजकल दिखते नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आते। कुछ एक डेढ़ साल पहले की घटना थी, मैं मंदिर से बाहर निकल के से अक्रॉस द रोड, उस साइड के रोड से चल के जा रहा था। कई सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो रुक कर मुझे हरे कृष्णा बोले हैं या कुछ दृष्टि मिलाई है। वो साइड से निकल जाते हैं, मैं भी निकलता रहता हूँ, कभी कोई वार्तालाप विशेष होता नहीं था। हाँ, उनकी पत्नी भक्तिदान हॉस्पिटल में सेवा करती थी तो उनसे कभी कभी हमारी बातें होती थी, वो हरे कृष्णा एक दूसरे से हम करते थे, क्योंकि हम लोग एक ही ऑफिस में काम करते थे। ये प्रभु जी कभी कभार उधर आते, लेकिन कभी मिले, बात नहीं किए थे। तो उस दिन मैं जब चल के जा रहा था ना, तो एक कार सामने से आ रही थी, सेकंड हैंड थर्ड क्लास फियाट कार, बरसों पुरानी, एक सामने से आ रही थी। तो मैं थोड़ा साइड हो गया, तो कार आके मेरे एकदम पास रुकी और उधर से एक व्यक्ति बाहर निकाल के कहता है, प्रभु जी हरे कृष्णा। तो मैं सोचा कौन है, क्या है, हरे कृष्णा तो वही व्यक्ति थे जो मुझे कभी बुलाते ही नहीं थे, तो कभी हमारा हरे कृष्णा होता ही नहीं था। तो कार साइड में रोक के हरे कृष्णा, मैं बोला हरे कृष्णा प्रभु जी, कैसे है, क्या है, क्या है, आज मंदिर आए हैं क्या? वो जल्दी आते नहीं है, कभी कभार साल में एक आध बार आते होंगे, हालांकि तिलक बिलक लगा के घूमते हैं, कंठी पहनते हैं, जपमाला भी हाथ में देखा है मैंने। कहते हरे कृष्णा, मैंने कहा हरे कृष्णा। बोले मैं सोचा कि जा रहा था तो आपको प्रणाम करूं, हरे कृष्णा करूं, तो मैं रुक गया, मतलब बहुत अच्छी बात है। फिर मैं निकल गया, उद्देश्य था कि मैंने कार ली है सेकंड हैंड फियाट, तो जरा आप देख लीजिए। ऐसे बहुत भक्त लोग करते हैं, एक दो नहीं, कार लेके निकलेंगे तो निश्चय ही रुकेंगे और आपको बताएंगे कि देखो मैंने कार खरीदी है। तो शायद आप क्या दिव्य दृष्टि पे रहेंगे तो आपको पता नहीं, हम लोगों के हृदय में क्या भोग वासना और कामनाएं चलती रहती है। जब जब मैं भक्त शब्द इस्तेमाल करूं तो मैं वो घर घर खेलने वाले भक्तों की बात कर रहा हूँ, जो वो 5% विरलों की बात नहीं कर रहा हूँ, या 10% जो विरले रहेंगे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत कामनाएं होती है हमारे हृदय में, हम लोग को पता ही नहीं है हाँ कि कितनी कामनाओं का, इच्छाओं का एक महासागर हमारे हृदय में सदैव चलते रहता, लहरें उठती रहती, उठती रहती, उठती रहती है। भोग विलास करना ही है। यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर जो एक इतने धनी व्यक्ति हो, जितनी कार चाहिए, जो चाहिए सब मिलने को तैयार है, उनको कुछ नहीं चाहिए। और हम लोग सदैव प्रयत्न करते कि एक कार हो तो दो हो जाए, वन बेड हो तो टू बेड हो जाए, थ्री बेड हो जाए, एक घर हो तो दो घर हो जाए, तीन घर हो जाए। बहुत ये समस्याएं हमारे हृदय में, हम सब लोग जानते हैं। जब तक हम ये कर रहे हैं तब तक हम घर घर ही खेल रहे हैं। एक्चुअली इतना समय नहीं, तो मैं थोड़ा विश्लेषण करके बताता था कि वास्तव में कार नहीं खरीदने वाला ही वास्तविक सुखी है, कार वाले सुखी नहीं हो सकते। क्योंकि जो कार खरीदता है उसको तो पहले ही 3-4 लाख लग गया, उसके बाद वो हर साल इंश्योरेंस भर रहा है 8-10 हजार का, पेट्रोल भर रहा है, कार संभाल रहा है, नीचे पड़ी है, रात को वो घर में सो नहीं पाता है कि कोई टायर में हवा निकलेगा, खरोच आ जाएगी। पत्नी और बच्चों से ज्यादा कार की चिंता करते रहता है, जो पत्नी बच्चे बाजू में रहते हैं उसकी चिंता कम करता है। कहीं लेके जाता है तो पार्किंग नहीं कर पाता है ठीक से, पुलिस परेशान करते हैं, आरटीओ परेशान करती है, खुद चलाता है टेंशन में रहता है पीछे से कोई लगा ना दे, आगे कहीं लगा ना दूं। हाँ, बहुत ज्यादा खर्चा करके भी वो सदैव दुखी रहता है। उसका साल का जो कार बंद करके जो टोटल मेंटेनेंस रहता है ना, इंश्योरेंस का या उसका कार मेंटेनेंस जो रहता है ना, उतने में आपको पता है आप टैप कैब या कूल कैब वगैरह आराम से जब जरूरत है तब बिंदास फोन करके बुला के एकदम राजा की तरह एसी कार में जा सकोगे। चलाएगा कौन? ड्राइवर। हम बैठ के जब कर सकते हैं। पुलिस की चिंता कौन करेगा? ड्राइवर। हम कृष्ण का चिंतन करेंगे, वो चिंता करेगा। पार्किंग का हमें क्या लेना देना, कहाँ पार्क करना है क्या नहीं करना है। और अमीरों के पास एक या दो कार होती है, कूल कैब में चलने वालों के पास 4-5 हजार कार तो बॉम्बे में ही घूम रही है। जो चाहिए जब चाहिए बुला लीजिए, आपकी है फोन करिए, क्या साफ करके आपके पास दौड़ते हुए आएंगे, हेलो सर करेंगे। और ये कार का मालिक बेचारा आरटीओ पुलिस को देख के डरता है और उसके बाद हेलो सर करता रहता है। तो ये सब वास्तव में एक्चुअली सुखी है ना त्यागी लोग ही होते हैं, ना कि भोगी लोग होते हैं। लेकिन ये हम लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए हम लोग भोग और कामना की इच्छा करते रहते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ऐसा नहीं करना चाहते हैं, वो सोच रहे कि मैं कैसे भागूं, अब ये मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। और हाल का बच्चा रहेगा तो वो सोचेगा माता पिता कैसे, मैं अगर मेरे लिए लड़की नहीं ढूंढ रहे तो किसी और की लड़की को लेकर भागूं। आज का लड़का ये सोचेगा, वो सोच रहे कि कैसे भागूं, ये मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे, तो वो भागना चाहते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन अवसर पाकर रात के समय जब उनके लिए जो सिक्योरिटी रखती थी कि ये भाग न जाए, हाँ सिक्योरिटी गार्ड जब सोए हुए थे, पिता कुछ काम से बाहर गए थे, माता घर में सोई हुई थी, तब अचानक वो भाग गए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्होंने संपूर्ण रीत से ग्रह का त्याग कर दिया, सारे सुखों का त्याग कर दिया और भागे सीधे वृंदावन की ओर। भागकर गए सीधा वृंदावन श्री राधा गोविंद देव के मंदिर में, और वहां श्री राधा गोविंद देव का दर्शन किया। और जैसे ही दर्शन किया एकदम भाव विभोर पागल हो गए, वो अष्ट भिखार आए उनके शरीर में, रोने लगे, हाँ चिल्लाने लगे, कीर्तन करने लगे, गाने लगे। और तब वहां पे लोकनाथ गोस्वामी, जीव गोस्वामी वो सब आए। वहां पे पहले से ही उन्होंने उनको दर्शन है स्वप्न में आके दर्शन देके बता दिया था कि कल नरोत्तम आएगा, आपको उसे संभालना है। और लोकनाथ गोस्वामी को यह भी बता दिया कि नरोत्तम को दीक्षा देनी है आपको, वो एक महान आचार्य का कार्य करेंगे, प्रचार का कार्य करेंगे। हालांकि प्रचार के कार्य के लिए ऐसे महान आचार्य जो मंजरी, जो स्वयं कृष्ण धाम से कृष्ण लीला से अवतरित होती है, उन्हें दीक्षा की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये तो पार्षद गण है। लेकिन दीक्षा की आवश्यकता हम जैसे कनिष्ठ लोगों के लिए है, तो वो प्रथा को चलाने के लिए, समझाने के लिए, उदाहरण स्थापित करने के लिए ये आचार्य लोग भी दीक्षा लेते हैं, वो लोग भी गुरु को स्वीकार करते हैं। क्यों वो लोग नहीं करते, हम सामान्य जन कहते हमें दीक्षा की क्या जरूरत है, हम क्यों दीक्षा लें। और उदाहरण के लिए प्रस्तुत करेंगे, कहां नरोत्तम दास ठाकुर ने दीक्षा ली थी बताओ, कहां इन्होंने, इनके कौन गुरु है, ऐसे सब कुछ कोई ना कोई उदाहरण देते रहेंगे। कभी कई बार मैंने देखा इस्कॉन में कुछ लोग जब दीक्षा नहीं लेना चाहते हैं ना, तो वो ऐसा कुछ उदाहरण देते हैं, मैं नहीं देना चाहता हूं, नहीं तो क्या जिसको पता नहीं वो उदाहरण देना शुरू करेंगे, देखो ऐसा भी है अपना उधर, ऐसा सब उदाहरण देके बहाना करते रहते। लेकिन वास्तव में एक्चुअली अगर हम कनिष्ठ लोगों को भक्ति करना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, दीक्षा अति 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 आवश्यक है, अति अति आवश्यक है। इसमें कोई ऐसा दलील नहीं कर सकता कि दीक्षा की कोई गुंजाइश या आवश्यकता नहीं है। है किसी के मन में यह शंका कि दीक्षा की आवश्यकता नहीं है? हालांकि जाहिर में कोई नहीं करता है, लेकिन 1-to-1 कन्वर्सेशन में कई लोगों ने मेरे साथ चर्चा पहले की है कि क्या जरूरत है। कृष्ण ने भगवद गीता में क्या कहा है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, है ना, अंत काल में अगर मैं कृष्ण का नाम लूंगा तो मैं कृष्ण के धाम में जाऊंगा, उसमें कोई शंका नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, कोई शंका नहीं है इसमें। भगवान ने पूरी भगवद गीता में कहां कहा है कि दीक्षा लेने के बाद अंत काल में मेरा स्मरण करोगे तो भगवत धाम जाओगे, ऐसा एक तर्क प्रस्तुत करते हैं। तो ये सब तर्क वितर्क के स्तर पे भक्ति गरगर भी नहीं खेल रहे, आप गरगर भी नहीं खेल रहे, केवल सोच रहे हैं वो गरगर खिलौना खरीदने का, बाकी वो भी नहीं कर रहे। क्योंकि गरगर खेलने वाला व्यक्ति धीरे 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 एक्सपर्ट हो जाता है, नहीं खेलने वाले व्यक्ति से कई गुना वो श्रेष्ठ है। जैसे नहीं खेलने वाला व्यक्ति ब्लाइंड है और गरगर खेलने वाला व्यक्ति कैटरेक्ट वाला है, कैटरेक्ट वाले का विजन तो है, भले उसको कैटरेक्ट है, मोतिया बिंदु है, घड़ी सामने दिख रही है कितना बजा वो पता नहीं चल रहा है बस, लेकिन ब्लाइंड को तो ये भी नहीं पता ना कि इधर घड़ी है लटक रही है करके। तो जो भक्ति मार्ग में ही नहीं है जो आते ही नहीं है, जो बाहर की दुनिया के, वो तो ब्लाइंड है, लेकिन जो कैटरेक्ट वाले होते हैं उनको कम से कम थोड़ा सा तो अंदाजा रहता है। हालांकि ये अलग बात है कि वेद कहता है कि ब्लाइंड लोग कैटरेक्ट वाले लोगों को एक्सपर्ट मान लेते हैं, वो लोग सोचते हैं कि ये लोग एक्सपर्ट है क्योंकि इनको सब दिखता है, समझता है करके। हालांकि कैटरेक्ट वाले को भी ठीक से क्लियरली नहीं पता रहता है, उसे कुछ अंदाजा रहता है कि ये घड़ी है। हाँ, जैसे उसे पूछो, यहां खड़ा रहेगा और पूछो कि घड़ी में कितना बजाए, तो वो नहीं दिखेगा, बोले वो नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन ब्लाइंड को तो वो पता नहीं, तो वो समझता ये एक्सपर्ट है, हाँ, ये बुद्धिमान है, ये ज्ञानी है। और इसी का लाभ कब छोटे मोटे तथाकथित भक्त लोग उठा लेते हैं, हर संस्था में देखा जाता है। जो एक्सपर्ट वास्तव में नहीं रहते, कैटरेक्ट वाले रहते हैं, लेकिन ब्लाइंड लोगों को अपना ज्ञान का वो प्रदर्शन कर करके उनको एक्सप्लॉइट करते रहते हैं, हमारे नजरों के सामने होता जाता है, देखते रहते हैं हम लोग। ये कैटरेक्ट वालों से बहुत सावधान रहना चाहिए। जो वास्तविक जो ज्ञानी होता है ना, वो कभी ये नहीं कह सकता कि मैं ज्ञानी हूं, वो कभी ये नहीं कह सकता कि मुझे आता है। अरे, आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत दूर की बात हो गई। हमने देखा है कि भौतिक ज्ञान में भी कोई भी एक फील्ड ले लो, उसमें भी आपको परफेक्शन लाना इम्पॉसिबल है, उसमें भी ज्ञानी या एक्सपर्ट बनना असंभव होता है। जैसे मान लो कोई कान का डॉक्टर बने, वो केवल कान का डॉक्टर बने ना, तो भी कान का एक्सपर्ट नहीं बन पाएगा वो जिंदगी भर। कोई समझो टीवी रिपेयरिंग करता है, वो भी कभी ये दावे के साथ नहीं कह सकता है कि मैं एकदम ही एक्सपर्ट हूं, अगर सही एक्सपर्ट है तो। तथाकथित एक्सपर्ट कुछ भी कहते रहेगा कि मैं एक्सपर्ट हूं, ये हूं। यहां तक कि इस्कॉन के एक तथाकथित ज्ञानी व्यक्ति ने एक बार मुझे कह दिया कि शिला प्रभुपाद जी को संस्कृत नहीं आता था, मुझे संस्कृत आता है। तो ऐसे ऐसे कैटरैक्ट वाले बहुत रहेंगे, जिसे कुछ समझता है नहीं और ये समझ लेते हैं कि मैं, हम लोग भक्त हो गए बहुत बड़े। तो संस्कृत हम लोग समझ ही नहीं सकते, असंभव है कि आज का आदमी संस्कृत समझे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, मान लो एक व्यक्ति का लड़का एसएससी में पढ़ रहा है, पिता को भी इंग्लिश आ रहा है, बेटे को भी इंग्लिश आ रहा है, लेकिन मां को इंग्लिश नहीं आ रहा है। और पिता और बेटे ने और मां ने तीनों ने मिलकर ये अपेक्षा की कि बेटा एसएससी में 90% लाएगा, बेटा होशियार है, ज्ञानी है, इंग्लिश पढ़ा लिखा है, 90% लाएगा। अब पिता भी ये अपेक्षा कर रहा है, माता भी अपेक्षा कर रही है, और सचमुच 90% आता है। तो इंग्लिश में अगर इसको कहना है, हाँ, कि बेटे ने पिता माता की अपेक्षा जो है उसको पूरी की, इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा? हाई फाई इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश वाला तो कहेगा ही सेटिस्फाइड और ही फुलफिल्ड हिज डिजायर, ऐसा कुछ कहेगा। लेकिन हाई फाई इंग्लिश जब लोग, बड़े लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो क्या कहेंगे मालूम है? ही बीट्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट्स। क्या कहेंगे? अभी कोई इसका भाषांतर करेगा कोई? ही बीट्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ हिज पेरेंट्स। अभी समझो, जिसको थोड़ा सा इंग्लिश आता है, थोड़ा सा अल्प मात्रा में, और वर्ड टू वर्ड डिक्शनरी में देख के वो भाषांतर करता है और सीख रहा है, कैटरेक्ट वाला पर्सन, उसको अगर वो डिक्शनरी खोलेगा, ही यानी वो, हाँ, बी यानी मारता है, एक्सपेक्टेशन यानी अपेक्षाओं को, उनकी यानी पेरेंट्स की, हाँ, इसने अपने पेरेंट्स की अपेक्षाओं को मारा, बिल्कुल अर्थ बदल गया, खत्म कर डाला, अर्थ गठन, अर्थ पूरा खत्म हो गया। हो गया कि नहीं? अर्थ को मारा कि नहीं? बिजनेसमैन रहेंगे तो समझ पाएंगे कि TCS बीट्स द स्ट्रीट, ऐसे लोग बोलते हैं कि भाई ये कंपनी ने सबकी अपेक्षाओं का, या ACC बीट्स द स्ट्रीट। लेकिन उसका एक्चुअल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करो, पूरा वाट लग जाएगा अर्थ का। ठीक संस्कृत वैसी भाषा है। संस्कृत का तथाकथित स्कॉलर अगर शब्द लेगा, हाँ, संस्कृत डिक्शनरी से, और जो थोड़ा छोटा मोटा सीखा है, वो संस्कृत का, भक्ति का, भाषांतर का, उसके भाव का, उसके प्रेम का पूरा वाट लगा देगा। ये केवल आचार्य लोग ही कर सकते हैं, जिनकी मूल भाषा ही संस्कृत है, क्योंकि गोलोक वृंदावन से आए हैं, वहां संस्कृत चलती है, उनको और कोई भाषा नहीं आती है। जैसे भक्ति चारू महाराज एक बार उदाहरण दे रहे थे कि मुझे, मैं फ्रेंच सीखने गया, बहुत मेहनत किया, लेकिन मुझे फ्रेंच नहीं आता है, लेकिन फ्रांस में 2 साल के बच्चे को बहुत अच्छा फ्रेंच आता है, मेरे से भी अच्छा। तो क्योंकि स्वाभाविक है ना, वो तो बच्चा ही फ्रांस का है, माता पिता के साथ बचपन से ही फ्रांस की जो फ्रेंच भाषा है वो सुनता है, वो पूरा जिंदगी स्कूल नहीं जाएगा ना तो भी फ्रेंच अच्छा ही बोलेगा और अच्छा ही समझेगा हम लोगों से तो, और हम पीएचडी भी हो जाए फ्रेंच में तो भी हमें उतना समझेगा। ठीक उसी तरह शिला प्रभुपाद जी या नरोत्तम दास ठाकुर के जो ये जो गुण होते हैं, जो ज्ञान होता है, जो वैराग्य होता है, इसे हम कभी बीट नहीं कर सकते। इसीलिए घर घर खेलने वाले को कभी ये अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम भक्त हो गए, हमें संस्कृत आता, हम ज्ञानी है। अरे सारे के सारे हम कैटरेक्ट वाले लोग हैं, कैटरेक वाले थोड़ा कुछ जो विजन है ना वो भी भगवान की देन है। आपने इस भगवान की दी हुई आंखों को टीवी देख देख के कैटरेक को इनवाइट करने का ही केवल कार्य किया और कुछ नहीं किया है। हाँ तो हमें समझना चाहिए। ये नरोत्तम दास ठाकुर जो है वहां पहुंचे हैं तो लोकनाथ गोस्वामी और उन्होंने सबने उनका आदर सत्कार किया, उन्हें ले गए, उन्हें प्रसादम दिया। और नरोत्तम दास ठाकुर जिन्होंने स्वप्न में सुना था नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु से कि उन्हें लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेना है, और लोकनाथ गोस्वामी को भी आदेश मिला था स्वप्न में, महाप्रभु ने स्वयं दिया था कि आपको नरोत्तम को दीक्षा देनी है। लेकिन अभी लोकनाथ गोस्वामी वो तथाकथित गुरु तो है नहीं आजकल की तरह, दीक्षा देनी है कितने को देनी है, 100, 500, 1000, 10000 सबको बुलाओ मैं दीक्षा दूंगा, होलसेल में एक पंडाल बंधा दो और लाखों लोगों को बुलाओ मैं सबको दीक्षा देता हूँ, मेरे इतने सारे शिष्य, मैं कह सकूं कि मेरे हजारों शिष्य है लाखों, ऐसे तो थे नहीं, उनका एक भी शिष्य नहीं था। और फिर भी वो एक शिष्य महाप्रभु ने कहा, फिर भी नम्रता से कहते हैं मैं कहां लायक हूं उसके लिए, मैं अभी तक ठीक से शिष्य नहीं बन पाया, गुरु कैसे बनूं, शिष्य मैं ठीक से बन नहीं पाया, गुरु कैसे बनूं, मैं दीक्षा नहीं दे सकता। नरोत्तम दास ठाकुर जब कहते कि मुझे दीक्षा दीजिए, बोले नहीं मैं दे ही नहीं सकता, आप किसी और अच्छे वैष्णव से दीक्षा लीजिए, हम लोग तो गुरु नहीं है इसलिए हम लोग अभी उसकी चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन एटलीस्ट कभी कभार हम ऑफिशियल या अनऑफिशियल काउंसिलर बनते हैं तो हमें भी ये नम्रता सीखनी चाहिए नरोत्तम दास ठाकुर से कि वास्तव में हमारे में कोई समता नहीं है, लायकात नहीं है, हम क्वालिफाइड नहीं है क्या बनने के लिए, काउंसिलर बनने के लिए। हम लोग काउंसिलर बनने के लिए क्वालिफाइड हुए ना वो भी प्रभुपाद जी की कृपा ही है, न तो वो भी नहीं बन पाएंगे। तो हमें भी कुछ स्वीकार करना है, गुरु के आदेश से सेवा के भाव में अगर करें और वही नम्र भाव में रहें कि हम इन सारे काउंसिलर्स के सेवक है, ना कि ये सब मुझे सेवा में मिले हैं गुरु परंपरा से, ये भाव कभी नहीं आना चाहिए। लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि वो भाव आ जाता है कि ये सब मेरे सेवक है, अब ये मेरी सेवा करते रहे और मेरा मानते रहे, ये भाव गलत है बिल्कुल, ये हमारे आचार्य या परंपरा का भाव नहीं होता है। यहां तक कि नरोत्तम दास ठाकुर जो इतने महान आचार्य है वो क्या कहते हैं, उनके शिष्य रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, उनके शिष्य के लिए कहते हैं रामचंद्र का मैं संग चाहता हूं, जबकि वो उनसे दीक्षा लिए हुए शिष्य थे। लेकिन यहां पे गुरु कहते हैं रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, तो बड़ा एक सावधान रहना पड़ता है जब कोई लीडर का पोस्ट लेता है या कोई मैनेजर का पोस्ट लेता है, तब उसे बड़ा सावधान होना पड़ता है। जैसे ये भागवतम का ये जो कथा चल रही है ना, उसमें ययाति महाराज की जो कथा चल रही है, तो ययाति महाराज को जब इसी घटना के बाद आगे चल के शुक्राचार्य ने जब श्रापित किया कि तुम वृद्ध हो जाओ, युवान राजा थे, अचानक श्राप दिया तुम वृद्ध हो जाओ, उस समय के ब्राह्मणों में ऐसी क्षमता थी, बोले वृद्ध हो जाओ तो वृद्ध हो गए। अरे वो तो एकदम भोग विलास में डूबे हुए थे, का संग, धर्मिष्ठा का संग, अनेक दासियों का संग, इतने डूबे हुए थे, अरे इनको अचानक वृद्ध कर दिया, हालत खराब हो गई इनकी। अरे कहते हैं नहीं नहीं ब्राह्मण महाराज क्षमा करिए, ऐसा मत करो, क्रोधित मत होइए, आप जो कहेंगे आपकी सेवा करूंगा, लेकिन मुझे वृद्ध मत बनाओ, किसी को वृद्ध नहीं बनना है, बाल सफेद हो गए तो छुपा के काले करके आएंगे कहीं से, नहीं वृद्ध नहीं बनना है, किसी को नहीं बनना है, किसी भी कीमत में नहीं बनना है। ययाति महाराज कहते हैं नहीं मुझे वृद्ध नहीं बनना है, प्लीज प्लीज प्लीज। तो शुक्राचार्य कहे ठीक है, अगर कोई युवान व्यक्ति कहता है कि मैं अपना युवान स्थिति तुम्हें दे दूं और मैं तुम्हारा बुढ़ापन स्वीकार कर लूं, अगर ऐसा कोई व्यक्ति तुम्हें मिला उसे ढूंढ के लाओ तो ये हो सकेगा, ऐसा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तो ये यार कि महाराज राजा थे, करोड़ करोड़ों रुपया था उनके पास, धन संपत्ति वैभव था, अनेक रानियां थी, दासियां थी, वो सोचे ये तो आसान काम है, ये तो कोई भी दे देगा, इनको पता ही नहीं था कि इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। कैटरेक वाले घर घर खेलने वाले भक्तों को बुलाओ कि जय बुढ़ापा ले लो और युवानी दे दो, तैयार ही नहीं होंगे, इम्पॉसिबल। सबसे पहले तो उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को ही यदु को बुलाया, बोले यदु बेटा तुम मेरे अच्छे बेटे हो, मैंने तुम्हारा पूरा जीवन ध्यान रखा है, तुम्हें अनेक भोग विलास की सुविधा दी, मैंने धन दिया, ये दिया, वो दिया, अरे बेटा एक काम करो, मैं बुढ़ा हो गया हूं और मुझे तो अभी भोग विलास करना बाकी रह गया है, ये दिव्यानी जो तुम्हारी माता है, ये शर्मिष्ठा जो तुम्हारी माता है, ये अब युवान है, अब इन लोगों का क्या होगा, आप मुझे है ना आपका यौवनता दे दो और मेरे से आप बुढ़ापा ले लो। बोले पागल हो गए क्या पिताश्री? बोले मैं क्यों तुमको यौवनता दूं, मैं कुछ नहीं दूंगा, मुझे भी तो करना है भोग विलास, मैं नहीं दूंगा। अरे बोले वो भी सत्युग वैदिक काल का समय था जहां असंभव था कि पुत्र के पिता को ना कहे, उस समय उसने मना कर दिया, बोले नहीं मैं आपके आदेश का पालन नहीं करूंगा। क्रोधित हो गए थे लेकिन क्या करें। फिर दूसरे तीसरे चौथे बेटे को पूजा, कोई तैयारी नहीं हो रहा था, सबसे छोटा वाला जो बेटा था पुरु नाम का, उसको पूछा कि बेटा तुम दोगे? वो भक्त था, वो त्यागी था, बोले मुझे क्या करना है, युवान अवस्था भी ना, मुझे क्या करना है, मुझे इन भोगों से कोई लेना देना नहीं, आपको चाहिए आप ले लो, मैं उल्टे का सुखी और संतुष्ट रहूंगा, मुझे और एक संतुष्टि बढ़ेगी कि मैंने पिता के आदेश का पालन किया, पिता की कुछ सेवा की, मैंने मेरा जीवन सार्थक किया, मैंने एक ऋण चुका दिया कि पिता ने मुझे जन्म दिया था, मुझे पालन पोषण करके बड़ा किया, मुझे ज्ञानी बनाया, हाँ आज मैं भक्ति को समझने के लिए अगर लायक हुआ हूं, अगर मुझे कुछ ज्ञान है तो आप ही की कृपा से वो ऋण मेरे ऊपर है, चुका देता हूं, आप लीजिए मेरी युवा अवस्था। एक्सचेंज ऑफर, आजकल अगर ऐसी एक्सचेंज ऑफर चली तो लाइन लग जाएगी वहां पे जहां से वो ऑफर आ रही है। इसी सेंटीमेंट का उपयोग करते हुए सारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री चल रही है, जितने भी क्रीम्स है या हेयर डाइज है या केमिकल जितने भी मिल रहे हैं बाजार में, सारी इंडस्ट्री सारे डॉक्टर इसी तथ्य पे चल रहे हैं कि लोगों को युवान रहना है, किसी को वृद्ध होना नहीं है। तो ये पुरु ने दे दिया अपना, देखिए सब कुछ दे दिया, इसे कहते हैं त्यागी। त्याग की भावना अगर सीखनी है तो इन्हीं कथाओं से ही केवल सीख सकते हैं। हाँ कभी कभार लोग प्रश्न करते कि अरे ये पुरु और ये ययाति महाराज, ये ययाति महाराज का कथा भागवतम में क्यों आता है जब इतना भोग विलास कर रहे हैं, या उसके पहले जो हम बात कर रहे थे हाँ वो उर्वशी वाला कथा, ऐसे सब लोगों की कथा मैंने बहुत बार विश्लेषण करके विस्तार में समझाया है यहाँ पे, ऐसे लोगों की कथा क्यों भागवत में आती है। अरे इन कथाओं से हमें बहुत कुछ सीखना है। तो प्रश्न ये होता है कि और भी तो कई भोगी है, उन लोगों को क्यों नहीं डाला गया इसमें, उन लोगों से भी तो हम यही चीज सीख सकते हैं कि ये भोग करके कैसे अपने आप को खत्म कर रहे हैं। तो वो लोग भी तो अरे मेरी कथा डालो, मैं भी भोग करके खत्म हो रहा हूं, मेरी क्यों नहीं आती, इन लोगों की क्यों डाली गई है। इन लोगों की कथा इसमें इसीलिए आई है कि भले जीवन की शुरुआत में इन लोगों ने कुछ भोग किया, हाँ अपने आप को खत्म किया, लेकिन बाद में ये सभी लोगों ने पश्चाताप किया है, बाद में ये सभी लोगों के हृदय में पश्चाताप का अग्नि दावा किया है ना, वो इतना प्रज्वलित हुआ है कि सब कुछ त्याग करके शत प्रतिशत अपना जो मन है वो कृष्ण के चरण कमलों में लगा के उन्होंने गोलक वृंदावन को प्राप्त किया है। इसीलिए उन लोगों की कथा भागवत में आती है कि सीखिए जरा इन लोगों से, पहले ये भोग कर रहे थे दुखी थे, हाँ ये भोग करके दुखी थे, चिंतित थे, परेशान थे, गाली गलौज कर रहे हैं यही लोग, हाँ भिखारिन कह रहे ब्राह्मण की पुत्री को, लेकिन यही लोग आगे चल के जब समझे अपनी गलतियों को तो महान महान भक्त बन के गोलक वृंदावन गए, इनको सबको मुक्ति मिली है, सब वैकुंठ गए, इसीलिए इन लोगों की कथा है। अगर आप में से भी कोई, हम में से भी कोई अगर ऐसा करेगा, अगर कोई गोलक जाएगा तो उनकी भी चर्चा विचारणा भक्त भागवत में आएगा भविष्य में, लेकिन जो पश्चाताप नहीं करते हैं हाँ उन लोगों की कथा क्यों डाले, क्या सीखनेंगे उनसे हम। दुखी हुए, चिंतित हुए, मुरझा गए तो कोटि कोटि हुए, ब्रह्मांड जब से बना है तब तक अनगिनत अनगिनत लोग हो गए हैं। कहीं 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 बार वेद कहता है कि समुद्र के किनारे पे जितने रेती के कण है उसको शायद गिनना संभव है, लेकिन इस भौतिक सृष्टि में कितने ब्रह्मांड है उसको गिनना असंभव होगा। तो जब अनगिनत ब्रह्मांड है, अनगिनत उसमें ग्रह है, उसमें अनगिनत कोटि कोटि जीवात्मा सदैव भोग विलासी कर रहे हैं, एक योनि से दूसरी योनि, मनुष्य में संतुष्ट नहीं हुए कुत्ता बन के भोग कर रहा है, कुत्ते में संतुष्ट नहीं हुए बंदर बन के भोग कर रहा है, वहां संतुष्ट नहीं हुए पिजन बन के भोग कर रहा है। भोग तो हम लोग चालू ही रख रहे हैं, अभी इसमें हमें क्या सीखना है? हमको बार बार प्रहलाद महाराज जैसे महात्मा सिखा रहे कि ये चबा हुआ हर जीवन में तुमने इसी को चबाया हुआ है, तुम फिर चबा रहे हो, लेकिन हम तो मानते नहीं है, सुनते नहीं है, बोलते नहीं वो जरा नया वेराइटी का पान आया है और बनेगा, अभी उसमें कुछ फ्लेवर डाला हुआ है, इसलिए हमको थोड़ा ट्राई करना है करके हम तो भागते रहते हैं, तो वो हम लोग कैसे समझेंगे? शिष्य बनने के लिए भी लायकात है क्या, वो भी तो सोचना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर को जैसे ही बताया लोकनाथ गोस्वामी के, मैं दीक्षा नहीं दूंगा, तो लेकिन ये दृढ़ निश्चय थे, दुखी हो गए, मुझे तो दीक्षा चाहिए तो उन्हीं से चाहिए, तो उन्होंने तय किया कि मैं, मुझे दीक्षा दे न दे, मैं इनका सेवक हूं, मैं इनकी सेवा करूंगा कुछ भी हो जाए। और सेवा भी कैसी सेवा, देखो एक राजा का बेटा, एक महान व्यक्ति, ज्ञानी, ये व्यक्ति कैसी सेवा करता है मालूम है? रात को 2 बजे उठेंगे, क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठेंगे, उठकर महाराज कहां जाएंगे? मल त्याग करने जाएंगे, उन समय में टॉयलेट बाथरूम फाटर गोविंदा रेस्टोरेंट वगैरह तो होती नहीं थी, मल त्याग करने के लिए जंगल में जाएंगे, अभी जंगल में 3 बजे अंधेरे में जाना, वहां क्या झाड़ी रहेगी, क्या क्या कंटक रहेंगे, स्थान कितना, अभी अंधेरे में कहां उस समय लाइट टॉर्च मोबाइल बैटरी कुछ नहीं था, तो कष्ट होता था सबको। तो लोकनाथ गोस्वामी भी वहां जाते थे, लेकिन 2 बजे नरोत्तम दास गोस्वामी उठ के वहां जाएंगे, रास्ता पूरा साफ करेंगे, ब्रूम रेत कर झाड़ू लेके जाते थे, झाड़ू से साफ करेंगे, वहां का जमीन जहां पे मल त्याग किया जाता उसको मस्त साफ करेंगे, पानी का लोटा रखेंगे, व्यवस्था करेंगे। लोकनाथ गोस्वामी आएंगे, उनको आश्चर्य होता था ये सब साफ सफाई कहां से हुई, कौन कर रहा है, थोड़े दिन कुछ सोचा नहीं, चलते रहा। अब मल त्याग करके चले जाएंगे ना, वापस नरोत्तम दास ठाकुर आएंगे, वहां जो मिट्टी रहती है उस मिट्टी को उससे कवर करेंगे, फिर उसको उठा के दूर फेंकेंगे, पूरा विहार को साफ करेंगे ताकि नेक्स्ट डे के लिए भी अच्छा वातावरण रहे वहां पे। और उस ब्रूम को साफ करने के बाद उसको ब्रूम झाड़ू को धोते, और धोने के बाद क्या करते पता है? उस झाड़ू को अपने छाती से गले से लगा के ऐसे आलिंगन करते थे ना कि जैसे एक भोगी व्यक्ति किसी स्त्री का आलिंगन करता होगा, मात्रा वही है भाव बहुत अलग है। आलिंगन करते बोलते ये मेरे गुरु का प्रसाद है, ये मेरे गुरु की कृपा है, यही मेरा एक्चुअली ऐश्वर्य है, धन मोरा नित्यानंद, वो भजन उन्होंने ही लिखा है, पति मोरा गौरचंद्र, वास्तविक धन क्या है? नित्यानंद ही मेरे धन है, पति कौन है मेरे, मेरे मालिक कौन है? गौरचंद्र। प्राण मोर युगल किशोर, युगल किशोर ही मेरे प्राण है, ये इनका वैराग्य होता है, ये इनका गुरु भक्ति होता है, ये इनका विचार होता है। दीक्षा के पहले से इतना नम्र और निम्न कक्षा की सेवा के लिए वो तैयार है, इतना नम्र भाव, इतनी निम्न कक्षा की। आजकल तो हम लोग देख ही रहे, शिष्य गुरु के साथ ऐसे समकक्ष होकर चलते हैं, समकक्ष आसन में बैठ जाते हैं, और कभी कभी तो गुरु को भी बोल देते हैं आपको पता नहीं है यहाँ क्या होने वाला है, इस तरह से मंदिर नहीं चल सकता, ऐसे चलेगा, ये होगा वो होगा, इसलिए मैं कहता हूँ घर घर खेल रहे हैं हम लोग, हालांकि गलत नहीं है, घर घर तो खेल रहे हैं ना, आज नहीं तो कल असली घर चलाने का सीख जाएंगे, कभी ना कभी तो बड़े होने वाले ही है। आशा करते कोई अभी कोई ऐसा महान वैष्णव आ जाए कि हमें छड़ी मारे अभिराम ठाकुर के जैसा, या कोई कृपा कर दे शिला प्रभुपाद जी जैसे महात्मा, हाँ कि हमको भक्त बना दे, बाकी घर घर खेलते रहे तब तक, छोड़ना नहीं है घर घर खेलना, ऐसा नित्य चलता रहा। लोकनाथ गोस्वामी सोचे कि ये कौन करता होगा रोज, एक दिन उन्होंने कर लिया कि आज जा मैं चेक करूंगा कि कौन है ये, तो वो रात को ही 12 बजे उधर जंगल में जाके वृक्ष के पीछे छिप गए देखने के लिए, क्योंकि 3 बजे के पहले ही तो कोई आता होगा ना, और वही रात भर वो छुपकर जप करके बैठे हुए थे। बरोबर 2 बजे के आसपास नरोत्तम दास ठाकुर आए और वो सब साफ करने लगे, साफ करने लगे ना, जब साफ किया तो लोकनाथ गोस्वामी बाहर आके बोले, अरे नरोत्तम ये तुम क्या कर रहे हो, एक मृक्ष, हाँ एक एक अभक्त की क्यों सेवा कर रहे हो? वो तो प्रणाम किए, बोले नहीं महाराज ऐसे मत कहो, मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं, आप मुझे स्वीकार करो ना करो, मैंने आपको गुरु के रूप में स्वीकार किया है, मैं आपकी सेवा करूंगा। वो इतने द्रवित हो गए ना इनकी, वो जानते थे ना कि राजा के पे धनी व्यक्ति है, इनके यहाँ हजारों सर्वेंट थे, हाँ तो वो जान गए, तो बोले इतने इतने नम्र व्यक्ति है, इनको महाप्रभु का भी आदेश है, इनको मुझे शिष्य बनाना ही पड़ेगा, इनको कृपा देनी ही पड़ेगी। हाँ कृपा देने के लिए गुरु के ऊपर फोर्स मत करो, दबाव मत करो, ऐसा कुछ कार्य ऐसी कोई सेवा करो कि गुरु को सामने से हृदय से इच्छा हो जाए कि मैं इस भक्त का उद्धार करूं, मैं इस शिष्य का उद्धार करूं। हम लोग का जैसा स्टाइल नहीं होना चाहिए, महाराज कृपा करिए, महाराज कृपा करिए, महाराज कंटाल जाते हैं, मालूम है कई महाराजों ने मुझे बताया, हम लोग कंटाल जाते हैं, ये लोग पीछे पड़ते हैं। मेरे गुरु महाराज है भक्तेश्वर दामोदर महाराज, एक दिन अगरतला सिटी में कई वो भक्त लोग आते जाते हैं ना दर्शन के लिए, आते हैं पैर छूते हैं, महाराज कृपा करो कृपा करो। तो मैंने एक दिन प्रश्न पूछा, महाराज आप कंटाल नहीं जाते, हजारों लोग आते हैं आपका पैर छूते हैं कृपा करो कृपा करो। तो महाराज ने बता दिया, अरे कंटाल जाते हैं हम लोग इनसे, लेकिन करे क्या, इसको कैसे समझाए कि कृपा कैसे मिलती है, क्या करना चाहिए उसके लिए, बस कृपा करो, कृपा मांगते हैं, बाकी कुछ नहीं करना है, ना जप करना है, ना कीर्तन करना है, ना कोई सेवा करनी है, कोई भक्ति का भाव नहीं है, लेकिन बस कृपा करो कृपा करो कृपा करो। हाँ जैसे होलसेल में ऐसे दान पेटी खोल के रखी है, भाई जा लेके जाओ लेके जाओ, जो चाहिए वो लेके जाओ, ऐसे ना कुछ पता ही नहीं, कोई आके कहता है बेटा दे दो, कोई आके कहता है सुंदर पत्नी मिल जाए मुझे, कोई आके कहता है कि महाराज कृपा करो बिल्डिंग का काम रुका हुआ है पूरा हो जाए, हाँ ये हो जाए वो हो जाए, अरे क्या कृपा करेंगे। कृपा एक्चुअली प्राप्त करने के लिए इतनी सेवा करनी, इतनी सेवा चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति जो लीडर या गुरु रहते हैं ना वो मजबूर हो जाए, वो हृदय से प्रसन्न होकर वो रोक ही ना सके अपने आप को, बोले नहीं इसका उद्धार मुझे करना ही पड़ेगा, ये एक्चुअली सही भक्त है। परेशान कर करके उनके पीछे पीछे घूमते 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 और तो सब पता रहता है, ये पीछे घूमने वाला कुछ नहीं कर रहा है, ये पीछे घूमते रहेगा बाकी कुछ नहीं, और जैसे ही मैं गया वो माया के पीछे घूमने का चालू कर देगा। तो महाराज लोगों को पता रहता है, हम लोग सोचते हैं कि हमें पता है, उनको कुछ पता नहीं रहता है। लोकनाथ महाराज को, लोकनाथ महाराज का नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा दिया, एक ही उनके शिष्य, पहले कभी ना थे आगे कभी किसी को दीक्षा नहीं दे, वो एक ही शिष्य थे। और दीक्षा देने के बाद भी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा आप तुम मेरे शिष्य हुए, बोले नहीं भक्ति का ज्ञान जीव गोस्वामी से लोगे। रूप और सनातन उस समय नहीं थे, वो तिरोभाव हो चुका था उनका, जीव गोस्वामी उस समय वहां पे थे, बोले भक्ति का ज्ञान, हाँ भक्ति क्या होती है वो सीखना है तो जीव गोस्वामी से सीखोगे, मुझे नहीं आता है। तो जीव गोस्वामी के अध्यक्ष में रहकर नरोत्तम दास ठाकुर भक्ति का ज्ञान और लेते हैं, भजन करते हैं, फिर इस भक्ति के ज्ञान लेते लेते उन्होंने दो भजन ग्रंथ लिखे, प्रार्थना जो फेमस भजन ग्रंथ है, जिसमें कई कितने भजन है, कितने 33 भजन इसमें है प्रार्थना में, और एक ग्रंथ है इनको पता रहेगा कितना कितने भजन है उसमें, दूसरे ग्रंथ 168 भजन, और एक एक भजन का एक एक वाक्य अगर आप सही समझ रहे हैं तो वो वास्तव में श्रीमद् भागवतम संपूर्ण है। एक एक लाइन है ना जो श्रीमद् भागवतम संपूर्ण है, वहां भक्ति है, वहां भक्ति में वैराग्य है, वहां हृदय से प्रार्थना है, प्रार्थना उनका ग्रंथ का नाम ही उन्होंने प्रार्थना दिया, हृदय से प्रार्थना है। हाँ इतने महान आचार्य होते हुए कहते हरि हरि विफल जन्म गवायो, हाँ कि मैंने अपना जन्म जो है वो विफल में गवा दिया, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया बिस खायो, वो उनके हृदय की भावना है। ऐसा नहीं कि वो आने वाले समय में मीरा रोड में एक पद्मनाभ दास है जो भोग करने वाले हैं उनको सिखाने के लिए भजन लिख के जाऊं कुछ शायद सीखे तो सीखे उसमें से, ऐसा नहीं भाव या सोचना था उनका, उनका उनका हृदय का नम्रता इतना था, इतने महान आचार्य थे, वो सोच रहे खुद अपने लिए कि हरि हरि विफले जन्म गवायो, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइयो, जान बुझ के मैं माया का विष खाते जा रहा हूँ खाते जा रहा हूँ खाते जा रहा हूँ, अपना जीवन बिगाड़ते जा रहा हूँ आगे चलते जा रहा हूँ बिगाड़ते हुए, विफल मनुष्य जन्म गवायो, गोलो के र प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, जो ये आचार्य गण नीचे लेके आए हैं, रति ना जन्मी लो के नीता है, उसमें मुझे रति मात्र भी दिलचस्प नहीं है, दिलचस्पी है तो टीवी सीरियल या बॉलीवुड मूवीज में दिलचस्पी है, उसमें दिलचस्पी है, उसका एक कण भी दिलचस्पी नहीं है इस गोलक हेरा प्रेम धन हरिना संकीर्तन में, रतिना जन्मी लोके नेता है, संसार विश्व नाले दीबा निसी यह ज्वले, दीपानिशी है ना, दिन और रात मेरा हृदय जल रहा है। किसमें जल रहा है? संसार और विष नाले, ये संसार जो विष का सागर है ना, इसमें भोग करने की इच्छा से जल रहा है। भोग मिल नहीं रहा है तो जलेगा ही। हृदय क्यों जल रहा है? भोग नहीं मिल रहा है। किसको भोग नहीं मिल रहा है? किसी को नहीं मिल रहा है, चाहे अंबानी हो चाहे हम लोग हो, किसी को नहीं मिल रहा है। भोग जैसा चीज या सुख जैसा चीज है ही नहीं। चपल सुख लभ लागी रे, चपल सुख का लभ यानी लालसा या इच्छा, हाँ, एक आदत पड़ गई है, वास्तव में कुछ है ही नहीं। अब बाई चांस कभी किसी पूरे जन्म में अगर मिल गया तो चपल सुख, चपल बोले तो एक क्षण का सुख है केवल, लेकिन उसी क्षण के सुख के लिए विफल जन्म गवाए। और क्योंकि वही माइंड, वही बुद्धि, हाँ, माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो, और वही अहंकार को लेके जब भोग की कामना करते 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 इस मनुष्य जन्म में तो नहीं मिलेगा। देखा जाता है कि जितना युवान था उससे जैसे उम्र बढ़ती है भोग की कामना दोगुनी, तीन गुनी, पांच गुनी, दस गुनी, पचास गुनी, सौ गुना हो जाता है। वृद्ध लोगों को देखा जाता है कि उसको तो ज्यादा कतरीना करीना चाहिए, हा? उसका उसका इच्छा बढ़ते और जाता है, स्पीड में बढ़ रहा है। और फिर वैसे ही क्योंकि मिला नहीं, तड़पता है, तड़पता तड़पता मर जाता है। अगला जन्म बंदर का या पिजियन का या कुत्ते का हम लोग लेते हैं, और फिर वही मन है तो वही इच्छा है, वो बुद्धि है तो उसी दिशा में चलेगी, वही अहंकार है तो उसी को प्राप्त करके उसी की आसक्ति में ही लड़े झगड़ेगा। और फिर 84 लाख योनियों का मुख खुल जाता है। और माया कहती है आइए मैंने आपके लिए बंदर योनि तैयार रखी है, अनेक बंदरियों के साथ विलास कीजिए। माया कह देती है हम लोगों को, तब हम भूल जाते हैं सब कुछ। और भूल जाने की वजह से एक खेल फिर कोटि कोटि जन्मों तक हमारे साथ चलते रहता है, कोटि कोटि जन्मों तक। ये मैं केवल थियोरिटिकल बता रहा हूं, मेरा भी वही हाल है, आई एम इन वन ऑफ दैट कैटेगरी। लेकिन थियोरी बार बार घर घर खेल रहा हूं मैं भी आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे भी सीखना है ना कैसे घर घर खेला जाता है आगे। तो दिस इज नॉट विथ एवरी वन, सबके हृदय में ये कामना है, इच्छाएं है भरी हुई है। कोई भी ड्रेस पहन लो, सफेद पहनो, लाल पहनो, 99% यही कामनाओं के साथ जी रहे हैं। लाल वाले भी सोच रहे कि कब सफेद पहने, सफेद वाले सोच रहे हैं कि कब पत्नी से थोड़ा दूर कहीं और गांव में जाके थी, कहीं और में कुछ आनंद करके आए। सबका यही प्रॉब्लम है, सारी फिल्म इंडस्ट्री इसी की वजह से चल रही है। अगर ये कामना खत्म, एक भी फिल्म नहीं चलेगी, सुपर फ्लॉप फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम द डे सीन वन। कोई भी फिल्म में कहानी देखने नहीं जा रहा है, सब लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, देख रहे हैं इसमें अपना भोग वृत्ति को ढूंढ रहे हैं कि मुझे यहां कहां नयन सुख मिलेगा। तो रिनंसिएशन हम इन आचार्यों के आविर्भाव और तिरोभाव के दिन अगर इन आचार्यों की कथाओं का स्मरण करें, श्रवण करें, कीर्तन करें, तो थोड़ा सा अगर उन आचार्य की कृपा मिल जाए तो शायद संभव नहीं है। अपने बल पे असंभव है कि चपल सुख हम छोड़ सके। चपल सुख के कारण माया हमको कितना भी मारे, कितना भी जूस निकाले, हम नहीं छोड़ने वाले। आचार्य की कृपा नहीं है तब तक असंभव है। भक्त, महान वैष्णव की कृपा चाहिए, सच्चा भक्त चाहिए। घूमने फिरने वाले तो, घर घर खेलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सच्चा कोई एक भक्त चाहिए। हाँ, और उसके लिए सच्चा कब मिलेगा? जब हमारे हृदय में सेवा भावना रहेगी तब कोई सच्चा भक्त बोलेगा रे इसके ऊपर कृपा करो, इसका कारण करना जरूरी है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में, हाँ, लोकनाथ गोस्वामी सोचते कि नहीं अभी इसको कृपा देनी ही पड़ेगी, कोई और चारा बचा ही नहीं। जीव गोस्वामी के मार्गदर्शन में अनेक ग्रंथा अध्ययन और ये प्रार्थना वगैरह लिखने के बाद उन्हें आदेश मिला कि जाइए वापस बंगाल में जहां से आए हैं, खेतुरी वगैरह विस्तार में, गोपालपुर विस्तार में जाइए और प्रचार करिए। वहां अनेक 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 लोग हैं भोग विलास में डूबे हुए, वैष्णव सिद्धांत किसी को पता नहीं है, सब भूल चुके हैं। अभी अभी महाप्रभु गए थे, वो समय चल रहा है लेकिन सब लोग वैष्णव सिद्धांत भूल गए। अभी अभी नित्यानंद प्रभु गए थे, अभी 20-25-50 साल नहीं हुआ है, सब सिद्धांत खत्म, ओरिजिनल घर छोड़ के सब घर घर खेलने लग गए थे या उससे भी नीचे उतर गए थे। और इनको बताया जाता है कि वापस जाइए, वहां से प्रचार करिए, वहां जाके प्रचार करिए। तो कुछ अपने जो संगी वैष्णव थे उन लोगों के साथ ये वापस आते हैं। उसमें एक रामचंद्र ठाकुर भी थे जो उनके शिष्य थे, और एक संतोष दत्त जो उनका भाई नरोत्तम ठाकुर का कजिन ब्रदर था, जो आगे चल के, हालांकि वो राजा था वो, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर चले गए तो राजा वो बना, वो उसका भाई था ना, तो उन्होंने भी वहां उनसे दीक्षा ली, नरोत्तम दास ठाकुर से दीक्षा ली। और नरोत्तम दास ठाकुर को वहां पे उन्होंने बताया कि आपको जितना धन चाहिए मैं दूंगा, यहां ही मंदिर स्थापना करिए और प्रचार करिए। तो मंदिर स्थापना के लिए और प्रचार के लिए संतोष दत्त जितना धन चाहिए वो देते थे। और गंगा नारायण करके उनके और एक शिष्य थे, वो भी उनको सहायता करते थे, रामचंद्र कविराज, गंगा नारायण और नरोत्तम दास ठाकुर, ये खेतुरी के गोपालपुर विस्तार में प्रचार करने लगे। अब प्रचार की शुरुआत ने सोचा कि एक खेतुरी, एक चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का दिन आ रहा था, गौर पूर्णिमा फेस्टिवल, तो बोले खेतुरी गांव में ही पहली बार चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन का उत्सव मनाएंगे हम सब लोग मिलकर। दैट वॉज द फर्स्ट गौर पूर्णिमा सेलिब्रेशन आफ्टर डिसअपीयरेंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद का सबसे प्रथम गौर पूर्णिमा फेस्टिवल एक्चुअली बड़े विस्तार पूर्वक सिस्टमेटिक जो मनाया गया वो ये प्रथम उत्सव था खेतुरी गांव में, जो नरोत्तम दास ठाकुर ने शुरुआत करवाई अपने शिष्य और अपने जो भाई जो शिष्य बन चुके थे संतोष दत्त के वैभव से। वहां पे उन्होंने बड़ा एक आयोजन किया, कीर्तन किया, स्वयं कीर्तन गाए, प्रार्थना से उन्होंने भजन गाया, और इस ये कीर्तन करते 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 इतने भाव विभोर में, क्योंकि ये शुद्ध कीर्तन है जो रेयर होता है। कीर्तन तो सब जगह बहुत जगह हम सुनते करते हैं, लेकिन रेयर कीर्तन, एकदम बोलते हैं ना दिव्य आध्यात्मिक कीर्तन मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। कीर्तन के कई नियम होते हैं, मैंने कई बार भागवतम में बताया, लेकिन हम इस्कॉन वालों की आदत है, हम प्रभुपाद के बताए हुए नियमों को भूल जाते हैं और अपनी रीत से ही स्टाइल से कीर्तन करते रहते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों करते वो पता नहीं है मुझे। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि एक सिंपल कीर्तन क्यों हम उसी नियम के अनुसार, जैसे वाजिंत्रों का आवाज है वो कितनी मात्रा में होना चाहिए, कौन गाएगा, उसका एक पूरा सिस्टम होना चाहिए, तो सब समाउ वी फेल, ऑल ऑफ अस वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम वन ऑफ देम। तो वो जो भाव विभोर कीर्तन, दिव्य कीर्तन चलता है, इतना दिव्य था कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव हुए। हाँ, गोलक वृंदावन छोड़ के महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, सारे पार्षद और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सभी पार्षदों को लेकर उस खेतुरी गांव में उस समय वापस आविर्भाव किए और कीर्तन में ज्वाइन हुए वो लोग, सब लोग, ऐसा दिव्य कीर्तन था। और सब लोगों ने देखा, ऐसा नहीं कि केवल दो चार लोगों को दिखा, सभी लोगों को दर्शन मिला कि महाप्रभु वापस आए, नित्यानंद प्रभु वापस आए, दिव्य भाव में वो लोग भी कीर्तन कर रहे हैं, यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर गा रहे हैं और वो लोग डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, इतना मस्त दिव्य कीर्तन, बहुत कम जगह पे मिलता है सर दिव्य कीर्तन। और दिव्य कीर्तन एक्चुअली उसी के हृदय से शुरुआत हो सकती है जिसके हृदय में वैराग्य है, जिसके हृदय में भक्ति है, जिसके हृदय में नम्रता है, जिसके हृदय में एक्चुअली दूसरों का उद्धार और कल्याण करने की इच्छा है, न कि अपने कल्याण के लिए कीर्तन कर रहा है। अपने कल्याण के कीर्तन करने वाले के कीर्तन एक फिल्मी गाने की तरह मधुर लग सकते हैं, लेकिन कल्याण का हो सकते हैं। हालांकि एटलीस्ट अच्छा है कि कीर्तन तो कर रहे हैं, हाँ, आज नहीं तो कल नहीं तो दो चार दस पंद्रह पच्चीस जन्मों में कभी ना कभी तो हृदय में इच्छा जागृत होगी कि अब मैं ये भोगों का त्याग करूं, मेरा कल्याण छोड़ू, अन्य लोगों का कीर्तन। जैसे शिला प्रभुपाद जी, वो कभी कीर्तन अपने लिए नहीं, अपना कल्याण का सोच के नहीं कर रहे, वो भविष्य में हम सब लोगों का कल्याण करने के इच्छा से कीर्तन करते थे। मैंने एक बार एक घटना बताई थी इनका कीर्तन कैसा होता है। देखिए, उन दिनों की बात है जब 1967 में शिला प्रभुपाद जी अमेरिका में कीर्तन करते थे, अमेरिकन वासियों का कल्याण करने की इच्छा से। हाँ, खुद को फेमस होना इसके लिए नहीं, कीर्तनकार को हमेशा फेमस होने की इच्छा रहती है ना, वो इच्छा को उसको मार देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। प्रवचनकर्ता को कभी ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं फेमस प्रवचनकर्ता के रूप में प्रख्यात हो जाऊं, जाना जाऊं। उसका हृदय में नम्रता से यही भाव होना चाहिए कि लोगों का कल्याण करने का सेवा जो मुझे वरिष्ठ वैष्णव ने आदेश देकर बिठाया है, मैं कितना उनके आशीर्वाद से नम्रता से सेवा कर सकूं, किसी का कल्याण हो, किसी का कल्याण हो तो मुझे संतुष्टि होगी कि मेरी सेवा धीरे धीरे सफल हो रही है, अन्यथा क्या मतलब है। कितना भी बड़ा ज्ञान का प्रवचन दे दिया, लोग वाह वाह तालियां बजाएंगे, प्रसाद अच्छा था, पटाखे फोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट भक्ति त्याग जीरो। नहीं नहीं, कार खरीदते रहेंगे, घूमते रहेंगे, ये करेंगे, भोग विलास, एवरीथिंग इज मीनिंगलेस एक्चुअली। घर घर खेल रहे हो, कुछ नहीं है। अचानक एक बार फटाक करके, जैसे माँ बाप बोलते चलो 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 बच्चे अभी खेलो, चलो चलो सब खिलौना फटाक करके बास्केट में डाल देते, सब खेल खत्म। वैसे अचानक एक दिन माया बोलेगी चलो 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 खत्म, अचानक तुम्हारा घर कार ये सब फटाक करके वो बास्केट में डाल देगी, बोले तुम्हारा खेल खत्म, जाओ कुत्ते बनो, उधर नया घर कर खेल शुरू करो, एंड हो जाएगा, दी एंड। कीर्तन अलग ही प्रकार का होना चाहिए। तो गंगा नारायण और वो लोग वहां पे सहायता करते थे कीर्तन भजन और प्रचार के लिए, और बहुत लोग वैष्णव बन रहे थे। वैष्णव जब प्रचार करता है, वैष्णव जब कीर्तन करता है अच्छा, तो उसके प्रभाव से बहुत लोग वैष्णव बनते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद जी का मैं कथा बताने जा रहा हूं, 1967 में वो कीर्तन करते थे, तब उनके पास कोई विशेष सुविधा नहीं थी, धन भी नहीं था, इस्कॉन सेंटर भी अभी तक एस्टाब्लिश नहीं हुए थे, कोई ज्यादा शिष्यगण नहीं थे, एक सिंपल हारमोनियम रहता था बस प्रभुपाद जी का, और कोई एक छोटा सा करताल या वो कर डुगडुगी बजाते ना, टेंग टेंग टेंग, क्या कहते मुझे पता नहीं, टेंग टेंग टेंग, ऐसा कुछ एकाध दो शिष्य के साथ कीर्तन, एकदम एकदम सादा कीर्तन। और उसका रिकॉर्डिंग भी अगर आप अभी भी सुनो ना, वो उस समय के कीर्तन का प्रभुपाद का, तो आप समझ पाएंगे कि वाजिंत्र कुछ नहीं है उनके पास, प्रभुपाद जी का आवाज ही मुख्य है, वाजिंत्र का थोड़ा सा हारमोनियम बजाए, डुगडुगी बज रही है और कुछ नहीं है। वो कैसेट बाहर पड़ी थी उन दिनों में, बाहर निकाली थी वो कैसेट, उस समय में एल्बम बोलते थे, एलपी रिकॉर्ड्स जो होती थी वो बाहर हुई थी अमेरिका में। और उस दिनों में एक फेमस वर्ल्ड फेमस सुपरस्टार, सुपर सिंगर, किसी को पता है नाम उसका कौन था? जॉर्ज हैरिसन, उस समय का पॉप सिंगर था वो, फेमस था सुपरस्टार, जिसके गाने के पीछे, जिसके म्यूजिक के पीछे दुनिया का हर व्यक्ति पागल था। अब कई लोग तो इतने पागल थे करोड़ों रुपया देने को तैयार थे उसका म्यूजिक सुनने के लिए। उसकी टिकटें जितनी भी थी करोड़ों रुपए में होलसेल में बिक्री हो जाती थी, इतना बड़ा सुपरस्टार था वो। पागल थे, केवल अमेरिका में नहीं, पूरे यूरोप में भी लोग पागल थे। यूरोप कितना दूर है, फिर भी सब लोग पागलों की तरह उनके पास आते या उनको बुलाते। यूरोप में करोड़ों रुपए का खर्चा, हजारों लाखों लोग जाते थे, क्या क्या होता था उन दिनों में। 1965 फेमस सुपरस्टार सिंगर जॉर्ज हैरिसन, बीटल्स ग्रुप, उस समय का इतिहास पढ़ेंगे तो एक प्रोमिनेंट, पता नहीं ऐसा कोई सिंगर आजकल के युग में शायद होगा भी नहीं, होगा तो पता नहीं है, लेकिन नहीं होगा शायद। एक बार की घटना हुई, शिला प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य श्याम सुंदर प्रभु जी को बताया लंदन में जाके प्रचार शुरू करो, कुछ देखो कहीं मंदिर बना सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। श्याम सुंदर प्रभु जी गए लंदन में, लंबी कथा है, वो व्यवस्था करने लगे, लेकिन उनको जब पता चला कि जॉर्जन इधर यूके में लंदन में है, सुपरस्टार है, बहुत ही प्रख्यात व्यक्ति है, बहुत ही धनी व्यक्ति है, अगर उसको हम कन्विंस कर सकें, उसको अगर हम प्रचार कर सकें, तो वो हमें प्रचार के लिए सहायता कर सकता है, अन्यथा लंदन में कौन हमें मदद करेगा। क्योंकि पहली बार शिला प्रभुपाद जी के ये चार शिष्य गए थे, उसमें श्याम सुंदर प्रभु जी प्रमुख थे, पहली बार लंदन में। उसके पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के दो सन्यासी शिष्य गए थे, कुछ कर नहीं पाए, वापस आके रिपोर्ट दिया, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता है प्रचार वहां पे, लोग इतना व्यभिचार कर रहे हैं, लोग इतना दारू पी रहे हैं, लोग इतना ड्रग्स ले रहे हैं, हाँ, लोग इतना मांसाहार कर रहे हैं, चारों नियमों को तोड़ने के लिए परम शुद्ध दैत्य थे वो लोग, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता है प्रचार, ऐसा रिपोर्ट सबमिट किया भक्ति सिद्धांत महाराज को। भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला प्रभुपाद जी को कि आप भविष्य में करना। प्रभुपाद जी ने वही इच्छा से, अभी तो इस्कॉन का शुरुआत अमेरिका में किया नहीं, भेज दिया श्याम सुंदर जाओ लंदन, गुरु महाराज का आदेश है। श्याम सुंदर प्रभु ने सोचा अभी जॉर्ज हैरिसन को मिले कैसे, हम तो एकदम अननोन व्यक्ति है, लंदन में हमें कोई जानता नहीं है, इनको मिले कैसे हम, कौन पहचानेगा हमें, कौन उनसे मिलवाएगा हमें, इम्पॉसिबल है ना इतने बड़े व्यक्ति को। जैसे हम लोग छोटे व्यक्ति कोई कहे कि भाई प्रधानमंत्री से मिलना है, कौन मिलवाएगा हमें, कैसे मिले हम लोग। अब प्रधानमंत्री को शायद मिल सकते हैं, जॉर्ज हैरिसन को मिलना मुश्किल होता है क्योंकि करोड़ों की भीड़ रहती है। तो भी जॉर्ज हैरिसन बोले चलो शिला प्रभुपाद जी की कुछ इच्छा रहेगी, प्रयत्न तो करना पड़ेगा, तो वैष्णव ड्रेस धोती कुर्ता सिखा तिलक लगा के गए। यहाँ पे एक एल्बम सिंगिंग जो चल रहा था, तो वहां पे गए, लाखों लोगों की भीड़ में दूर से प्रयत्न दूर खड़े थे, सोच रहे थे कि जॉर्ज हैरिसन को कैसे मिलूं क्या करूं, सोच रहे थे। इतने में दूर से जॉर्ज हैरिसन उनको देखे और देख के अपने जो असिस्टेंट कोई सेवक रह गए उनको बोलते हैं जल्दी से जाके उस व्यक्ति को मेरे पास लेके आओ। जॉर्ज हैरिसन को ये मिलने की सोच रहे इनके लिए असंभव था। हाँ, जैसे व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल सकता लेकिन प्राइम मिनिस्टर चाहे तो मिल सकता है। यहाँ पे जॉर्ज हैरिसन अपने सेवक को कह रहे हैं असिस्टेंट को, वो जो धोती कुर्ता तिलक वाला व्यक्ति है ना उनको मेरे पास लेके आओ। तो वो आए, अनाउंसमेंट करवाया, उनको बोले अरे चलो आपको जॉर्ज हैरिसन बुला रहे हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा, बोले अरे प्रभुपाद जी की कुछ कृपा हो गई लगती है, चलो चले गए। बोले इंग्लिश में वार्तालाप हो रहा है उन लोगों का। श्याम सुंदर प्रभु जी बोले यस हाउ कैन आई सर्व यू, आई वॉन्टेड टू मीट यू, प्लीज टेल मी। क्या बताया जॉर्ज हैरिसन ने पता है? कुछ ऐसा नहीं बोले हाय हेलो हाउ आर यू फॉर्मली, कुछ नहीं, कहां से आए हो कौन हो क्या नहीं, कुछ नहीं। बोले आप शिला प्रभुपाद जी के आदमी हो, तिलक से मुझे ऐसे लग रहा है। बोले हाँ। तो वो शिला प्रभुपाद जी ने वो जो कैसेट निकाला है ना हरिनाम संकीर्तन, वो हरे कृष्ण महामंत्र का वाजिंत्र वाला जो कैसेट है ना वो मुझे चाहिए। बोले क्यों? बोले मैंने खरीदी थी, मैं दिन रात उसको सुनता हूं, मैं उसके पीछे पागल हूं, उस कीर्तन के पीछे, वो इतना अच्छा मुझे म्यूजिक लगता है, लेकिन इतनी बार मैंने बजाया कि वो घिस कर खराब हो गई है। अब जब से नहीं है मैं तड़प रहा हूं, मुझे वो कैसेट चाहिए, कैसे भी करके मुझे वो कैसेट दिलवाइए, आप मेरे घर पे आइए, जितना पैसा चाहिए ले जाओ, लेकिन मुझे वो कैसेट चाहिए, वो कैसेट जिसमें शिला प्रभुपाद जी ने हारमोनियम में सिंपल ट्यून हरे कृष्ण महामंत्र गाया, कुछ भी नहीं। जॉर्ज हैरिसन सुपर सिंगर है, सुपर स्टार वर्ल्ड फेमस को शिला प्रभुपाद जी का वो कीर्तन का कैसेट चाहिए, खुशी खुशी वो कैसेट। आगे बहुत बड़ा इतिहास है, उन्हीं के धन से कृष्णा बुक छपी है इस्कॉन में, उन्हीं के धन से लंडनेश्वर मंदिर जो लंदन में है उन्हीं का धन से हुआ है। अब शिला प्रभुपाद जी ने पर्सनली आशीर्वाद दिया है, ही इज नॉट हैरिसन, ही इज हरिसन, हरि का बेटा है वो, ये हैरिसन नहीं हरि का बेटा है, हरिसन है ये भगवत नाम जाएंगे। तो ये होता है आचार्यों के कीर्तन में शक्ति। लेकिन कुछ लोग क्या है ईर्षा भी करते हैं, है ना, ईर्षा एक स्वाभाविक ऐसी चीज है ना कि भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने से सफल व्यक्ति की ईर्षा करता है। अब क्योंकि हम सब लोग भक्ति मार्ग में आते हैं तो आए तो भक्ति उस भौतिक जगत से ही आते हैं ना, तो कुछ कुछ संस्कार हमारे हृदय में भी रह जाते हैं, चाहे हम भक्त बने ब्राह्मण हो जो भी हो। जैसे एक प्रभु जी दो चार दिन पहले मुझे कहता है चोर चोरी छोड़ देता है लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ता है, हा? उसका आदत रह जाता है। वैसे हम लोग भक्ति में शुरुआत में गरगर जब खेलते हैं तो हमारे हृदय में भी ईर्षा की भावना आ ही जाती है, अरे वो कैसे प्रेसिडेंट बन गया, उसको तो कुछ आता भी नहीं है, ये तो ठीक नहीं है, इसको कैसे मैनेजर बना दिया, ऐसे सब ईर्षा हमारे हृदय में आती रहती है, मैं उससे तो अच्छा हूं कई गुना, मेरे को क्यों नहीं कुछ ये करता है। तो उस समय के वहां पे जो प्रचारक थे स्मार्त ब्राह्मण, जिसका समाज में वर्चस्व था, जिनकी लोग सुनते थे कि यही लोग प्रचारक है, हालांकि वो लोग तथाकथित प्रचारक थे, भोगी लोग थे, स्मार्त ब्राह्मणा थे, वो लोग ईर्ष्या करने लगे नरोत्तम दास ठाकुर का, और वहां के जो राजा थे नरसिंह महाराज उनको कंप्लेन किया, बोले ये नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो एक्चुअली कयस्थ मलेच्छ, हाँ ऐसे परिवार का व्यक्ति है, ये तो शूद्र है, और ये शूद्र व्यक्ति का देखो इसका कार्य तो आप देखिए महाराज, ये हमारे ब्राह्मणों को दिखता दे रहा है, इसको सजा देनी चाहिए, इसको कुछ करना चाहिए इनका, ये देखो ये शूद्र का कार्य, ये शूद्र देखो इसकी हिम्मत तो देखो, ईर्ष्या ऐसी जानते नहीं इनके प्रभाव को। तो वो भी महाराज आ गए, बोले कौन है भाई जो शूद्र होके ये कर रहा है, शूद्र को अधिकार नहीं है वेद पढ़ने का, ये दीक्षा कहां से देने लगा? क्योंकि भौतिक दृष्टि से लीला की दृष्टि से अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो उनका परिवार कयस्थ परिवार में जन्म हुआ था, तो उसको शूद्र मानते थे लोग वहां के स्मार्त ब्राह्मण। व्यक्ति को कोई जन्म नहीं देखते ये तो शास्त्र कहता है, लेकिन इनको कहां ये ब्राह्मणों को अक्कल होती है। तो इनको इनका कंप्लेन कर दिया। महाराज ने कहा कि अपना विस्तार का सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति कौन है, उसे बुलाओ। बोले रूप कविराज। बोले बुलाओ उसे, रूप कविराज को बुलाया। बोले वेद के प्रखर पंडित ज्ञानी दिग्विजय, तुम्हें टाइटल मिला है, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, जितना धन चाहिए वो दूंगा, तुम्हें चलकर इस नरोत्तम दास ठाकुर को परास्त करना है, शास्त्रों पे चर्चा करना है और इनको परास्त करना है, इनको बता देना है कि अरे शूद्र तुम शूद्र हो, तुम्हारा ये कार्य नहीं है, ये हमारा कार्य, हम ब्राह्मणों का काम है। और रामचंद्र कविराज जो थे, जो उनके कोई शिष्य रहा, इनके शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर को उनको पता चला, गणनारायण जो उनके शिष्य उनको पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है और दिग्विजय पंडित आने वाले हैं इनको हराने के लिए, तो बोले हमारे गुरु का साख हमें रखना चाहिए, हम शिष्य लोग का कर्तव्य है, अब इनको हम पहले उधर पहुंचने कैसे दिए, हम ही परास्त कर देंगे। बोले हमसे तो वो चर्चा करने नहीं आएंगे। तो उन लोगों ने एक प्लान बनाया, एक बना सुपारी पान बेचने वाला व्यक्ति का पूरा वेश पहन लिया और एक बना कुंभार का वेश पहन के घड़ा बेचने वाला व्यक्ति, और जिस गांव में बड़ा पंडाल लगा था और वो कविराज आया था, रूप कविराज और राजा और वो सब ब्राह्मण लोग जो इनका विरोध कर रहे थे, ये सब लोग जो आए थे वहां जहां पंडाल लगा था, चर्चा होने वाले थी आगे नरोत्तम दास ठाकुर के संग में, वहां उन्होंने अपना अपना दुकान खोल डाला, एक मटका बेच रहा है, एक पान बेच रहा है, दोनों कायस्थ शूद्र वेश में। और ये जो स्कॉलर्स लोग राजा के संग जब निकले तो ये दोनों आपस में संस्कृत में बात करने लगे, मटका बेचने वाला पान बेचने वाले, ये दोनों आपस में संस्कृत में बातें करने लगे। हम लोग तो कर ही नहीं पाएंगे, हम तो शूद्र भी नहीं, म्लेच्छ लोग रहते, संस्कृत कहां हमें कुछ आएगी। तो वो लोग संस्कृत में बात करने लगे, ये राजा और ये बड़े बड़े ब्राह्मण और ये रूप कविराज, ये लोगों ने सुना तो बोले अरे ये शूद्र लोग यहाँ इस गांव में संस्कृत में बातें करते, तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो उनसे पूछा कि भाई आप कौन है, आपको संस्कृत कैसे आती है, तो बोले हम नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य है, महाराज श्री की कृपा से हमें दीक्षा मिली है और ज्ञान मिला है, तो हम थोड़ा कुछ जान लेते हैं, संस्कृत वगैरह में आता है। बोले अच्छा, तो उनको अहंकार तो था, बोले जरा टेस्ट करके देखते हैं इन लोगों को, तो टेस्ट करने से पता चलेगा इनका गुरु को कैसे कल परसों परास्त करना है। बोले अच्छा आप उनके शिष्य हो, क्या क्या आता है जरा बताओ। तो बोले हम तो बुद्धू लोग हैं, हमें क्या आता है, आप दिग्विजय पंडित है, आप कुछ बताइए। वो तो फटाफट बोलने लगा वेदों का, श्लोकों के साथ में धड़ श्लोक के पीछे श्लोक के पीछे श्लोक, बड़े बड़े ज्ञान की बातें करने लगा। ये पंडित, ये दोनों ने ध्यान से सुना सब कुछ, और जब सब सुनने के बाद एंड में कहते हैं कि तुम जितना जो कुछ बड़बड़ कर रहे हो ना, ये कौओं की तरह कौ 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 है, ये वेद नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, ये तुम कौओ की तरह कौ 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 कर रहे हो केवल, ये वास्तविक वेद नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, ये भक्ति नहीं है। बोले अच्छा, हम ब्राह्मण लोग को ये कहता है भक्ति नहीं है, वेद नहीं है, हम लोग जाता है तुम्हें बताया था, तुम बताओ क्या हो भक्ति। वो लोग बड़े नम्रता से गुरु को प्रणाम करके अपने वैष्णव आचार्यों के सिद्धांत पे ज्ञान बताने लगे कि भक्ति वास्तव में क्या होती है। जब उन्होंने बताया थोड़ा आधा एक घंटा, जब बताए ज्ञान के बारे में, अब जो एक बोलते हैं ना दिव्य ज्ञान का जो धारा चलती रही, वो सुनकर वो ज्ञानी एकदम आश्चर्यचकित हो गया, जो इसको जीवन में कभी सुना नहीं था, जो समझा नहीं था, ऐसे ऐसे तथ्यों को ये बताने लगे। जैसे शिला प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे ना कि बड़े से बड़े जो प्रख्यात फेमस जो गीता के हमारे यहाँ टीकाकार लोग हैं ना, इनको किसी को भी गीता का एक श्लोक का भी अनुवाद नहीं आता ठीक से, कोई तात्पर्य नहीं आता। हाँ, वो राधा कृष्ण और क्या क्या बड़े बड़े पंडित थे, लीलामृत में उसका वर्णन है कि वो लोग ने जो गीता के टीका के ऊपर प्रवचन सब देते थे, सब के सब बकवास प्रवचन दे देते, सब फालतू थे, लेकिन फेमस थे वो, सुपर फेमस थे इंडिया में, गीता के टीकाकार के रूपों में ग्रंथ लिखे थे और सब लोग उनको बुलाते थे, लेकिन एक ही लोगों को ज्ञान भक्ति क्या होती वो पता नहीं था, इनको भी पता नहीं था पहली बार। और चूंकि एक सच्चे हृदय से, एक नम्रता के भाव से, गुरु के आशीर्वाद पे आधारित भक्ति सिद्धांत का ये ये जो ज्ञान चल रहा था, जो नदी चल रही थी, तो इस ऐसे अज्जड़ जो मास ब्राह्मण था ना, इसका भी हृदय परिवर्तन हो गया और ये भी इनके चरणों में गिर के बोलता है, आप धन्य हो, आपको पता है अच्छे शास्त्र और भक्ति। और राजा को बोले, महाराज हम कल नहीं जाएंगे नरोत्तम दास ठाकुर के साथ वार्तालाप करना, जिनके शिष्य हमें परास्त कर चुके हैं, अब उनके पास जाके क्या करेंगे। कैंसल हो गया पूरा प्रोग्राम, चले गए, वापस चले गए वो लोग। हाँ, और ऐसे ऐसे महान उनके शिष्य थे, इतने इतना ज्ञान उनके शिष्यों को था। सच्चे शिष्य के पास हमेशा भक्ति का ज्ञान रहेगा, चाहे उसे संस्कृत आता है नहीं आता है, भक्ति की भाषा भले बोलाचार जो बोलने के लिए संस्कृत है, लेकिन भक्ति की भाषा एक्चुअली हृदय की भाषा है ना, आत्मा और परमात्मा के बीच में प्रेम की भाषा है। ब्रज में जो ग्वाल बाल थे उनको कहां संस्कृत, क्या अभी वो संस्कृत में बातें करते, कहां पंडित थे, कहां गुरुकुल में गए थे वो, तो जैसे वो फ्रांस में जैसे फ्रेंच बोलते हैं बच्चे, वैसे ये लोग घर घर की भाषा बोले, ब्रज भाषा या संस्कृत भाषा वैसे ही। लेकिन आज उन्हीं को सबसे बड़े भक्त बताए गए। गोपियों को कहां संस्कृत का कोई है, वो बोले हमको कहां कुछ आता है पता है कुछ। लेकिन नारद मुनि जैसे महात्मा कहते हैं कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है मुझे नहीं पता है, अगर किसी को जानना है कि सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है तो गोपियों को देखो वो क्या कर रही है, वो जो कर रही है उसी को सर्वश्रेष्ठ भक्ति कहते हैं। नारद मुनि जैसे महात्मा अपने ग्रंथों में लिखते ऐसे कहते हैं, सोचिए। तो ज्ञान की जो अहंकार में लोग जो है वो भले ना फिर प्रचारक क्यों ना हो बड़े बड़े, उन लोगों को भक्ति समझ में नहीं आ सकती, असंभव है। भक्ति के लिए एक पात्र चाहिए, उसका जो हृदय है ना, हाँ, वो इतना नम्र चाहिए, इतना नम्र चाहिए कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इतना उसका पात्र नम्र होना चाहिए जैसे सिंहण का दूध को धरने के लिए गोल्ड का पात्र चाहिए। अगर गोल्ड का पात्र नहीं है, हाँ, गोल्ड का पात्र नहीं और सिंहण का दूध अगर उसमें डाला जाए ना, वो 15 मिनट में छेद करके निकल जाएगा। वो केवल गोल्ड के सुवर्ण पात्र में ही सिंहण का दूध रहता है। वैसे भक्ति केवल नम्र हृदय में ही रह सकती है, ज्ञान या अहंकार के हृदय में भक्ति का टिकना असंभव है। वो 10-15 मिनट प्रवचन के समय में आंखों से अश्रु बहते दिखेंगे और बातें बड़ी बड़ी चलेगी, 15-20 मिनट में वो बहकर कहां निकल जाएगी कुछ पता भी नहीं चलेगा। सिंहण के दूध की तरह वो उसके बस में आने वाली चीज नहीं होती है। हम लोगों को पता ही नहीं है भक्ति क्या होती है। जैसे 2 साल के बच्चे घर घर खेलते हैं, उनको वास्तव में कहां घर के बारे में पता है, घर घर मतलब एक्चुअली क्या होता है, कहां वो सचमुच, वो बोलते हैं चावल डाला खिचड़ी पकाया, सचमुच चावल लाना कितना कठिन होता है वो तो हम गृहस्थ लोग जानते हैं, कैसे कठिनाई से हम अपना अन्न दाना सब्जी फल वगैरह लाते हैं, हाँ, कितना परिश्रम करना पड़ता है, उनको कहां पता है बच्चे को, और कहां उनका पेट भरता है उससे। थोड़ी देर बाद तो वही रोते रोते आते हैं माता पिता के पास ही, अपना चावल छोड़ के उनका ही चावल खाने के लिए। हम लोगों के जप कीर्तन भजन से पेट आत्मा का जो संतुष्टि है वो नहीं होने वाला है, पेट नहीं भरने वाला है। इन आचार्यों का कीर्तन श्रवण से, इनका प्रवचन सुनने से, हाँ, उनकी जीवन लीला सुनने से शायद हमारे आत्मा की संतुष्टि होगी, शायद हमारा पेट भर सकता है धीरे धीरे धीरे। बाकी डिंग डांग घर घर खेलने से कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे दिनों में हमें नरोत्तम दास ठाकुर जैसे महान आचार्यों के जीवन से कुछ सीखना है, समझना है, दोहराना है, प्रार्थना करनी है, आशा करनी है कि कभी ना कभी ये महात्मा कृपा करें और उनके जैसे जो उनके संगी महात्मा है वो लोग कृपा करें। अगर उन लोगों की कृपा नहीं हुई है जब तक कोई महान वैष्णव की, तब तक घर घर हम खेलते रहेंगे और तब तक हरी हरी विफल जन्म गवायूं हमारा चलता रहेगा। नम्रता ह्यूमिलिटी ये हजारों हजारों वेदों के ज्ञान से बढ़कर है, हजारों गुना। वेद का पंडित का कितना भी ज्ञान हो उससे हजारों गुना श्रेष्ठ है नम्रता, हजारों गुना श्रेष्ठ है एक सच्चे एक सेवक बनने की इच्छा, हाँ, कि हम गुरु के सच्चे सेवक बने, गुरु के समकक्ष बनने की प्रयत्न न करें। और शिला नरोत्तम दास ठाकुर से हम सब लोग प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में जो भोग विलास कामना है ये असंभव है कि हम निकाल सके, ये केवल आप जैसे त्यागी जिसके पास सब सुविधा थी, हाँ, जैसे आप लोग आपने छोड़ा है वैसे आपकी कृपा से ही हम शायद छोड़ सकते हैं, पता नहीं इस जन्म में होगा कब होगा, लेकिन इन लोगों के आशीर्वाद से ही होगा तो होगा, अन्यथा प्रयत्न जीवन भर चालू रखना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रयत्न और उनके आशीर्वाद की कामना, आशीर्वाद मिले ये दो ही चीज काम आ सकते हैं, और आशीर्वाद तभी मिलेंगे जब हम उसके लायक हो जाएंगे, सेवक के भाव में रहेंगे। तो हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न टीका टिप्पण, जैसे एक्सपर्ट लोग टीवी पे कभी भी आप सुने होंगे कुछ बोलते हैं तो लास्ट में एक डिस्क्लोजर देते हैं, डिस्क्लोजर यानी कि हमारा ये पोजीशन है, हम ये करते हैं जो सही में वास्तविक जो रहते हो। हाँ, तो मेरा डिस्क्लोजर है जो मैंने कथा बताया आज का, वो वैष्णव ग्रंथ सिद्धांतों पे आधारित है, जो आपने बताया वो मैंने बता दिया। मेरा अपना जीवन ऐसा नहीं है, और कुछ लोग तो आप जानते भी है, और कुछ लोग तो ऐसे भी मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं कि वो लोग वास्तव में मेरा जीवन जानते हैं कि ये तो बकवास कर रहा है, अपना बोल रहा है लेकिन पालन कुछ नहीं कर रहा है। ये मैं डिस्क्लोजर देता हूँ, मेरा वही पोजीशन है, स्थिति है। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, कृपया आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो कभी ना कभी आगे चल के कर सकूं। अभी मुझे और मेरे बल की कोई आशा नहीं है, आपके आशीर्वाद की कामना, उसी आशा से मेरा जीवन चल रहा है। हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की।